واعلم ان الوضع يستلزم الدلالة لان الدلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شيء اخر فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة فبعد ذكر الوضع لا حاجة الى ذكر الدلالة كما وقع في هذا الكتاب لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لامكان ان تكون بالعقل. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم نے کلمہ کی تعریف میں جو آخری قید آئی تھی مفردین، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مفرد کا لفظ نحو کے اندر چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. کبھی یہ مرکب کے مقابلے میں آئے گا، کبھی جملہ کے مقابلے میں آئے گا، کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آئے گا، اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آئے گا. تو جب کہیں مفرد کہہ دیا جائے تو کبھی مرکب کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، کبھی مفرد کہہ دیا جائے تو جملہ کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، یعنی جملہ جو نہ ہو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور کبھی مفرد کہہ کر تثنیہ اور جمع کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کو. تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر جو مفرد کا لفظ آیا ہے وہ مرکب کے مقابلے میں ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کو آگے چل کر بتایا تھا کہ اس قید کے ذریعے جو مفرد کی قید لگا دی مرکبات نکل گئے، چاہے مرکبات کلامیہ ہوں چاہے مرکبات غیر کلامیہ ہوں. بھائی، اور مرکبات کلامیہ کسے کہتے ہیں اور مرکبات غیر کلامیہ کسے کہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ مرکب جو کلام ہو وہ ہے مرکب کلامی، اور وہ مرکب جو ہے تو مرکب لیکن کلام پورا نہیں ہے، یعنی صرف موصوف صفت ہیں جیسے رجل شجاع، یا صرف مضاف مضاف الیہ ہیں جیسے غلام مزیدین. اب یہ ہیں تو مرکب لیکن کلام نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب غیر کلامی. تو جب مفرد کی قید لگا دی کلمہ کے اندر تو مرکبات نکل گئے. بھائی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مفرد کے اندر تین احتمال ہیں، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. مفردن، مفردین، مفردن. اگر مجرور پڑھیں تو اس صورت میں یہ صفت ہوگی معنی کی، لمعنم مفردین، اور معنی مجرور ہے کیونکہ اس پر لام جارہ داخل ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ الکلمت لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. تو یہاں وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر معنی جو ہے وہ متصف ہو رہا ہے افراد کے ساتھ، یعنی معنی مقید ہے کس کے ساتھ؟ افراد کے ساتھ. اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ مقید کی طرف جب فعل کی نسبت کر دی جائے تو وہ قید کے ساتھ اس کا اتصاف مقدم ہوتا ہے فعل کی نسبت سے. جیسے جاءنی رجل عالم، میں نے جاء کی نسبت کر دی رجل عالم کی طرف، یعنی رجل ایسا اسم ہے جو پہلے سے ہی عالم کے ساتھ، عالم کی صفت کے ساتھ مقید ہے. تو ایسا اسم جو پہلے ہی مقید ہو، اس کی صفت آ رہی ہو، اس کی طرف جب فعل کی نسبت کی جائے تو وہاں اس اسم کا صفت سے اتصاف مقدم ہوتا ہے، اور فعل کی طرف جو نسبت ہے وہ مؤخر ہوتی ہے. تو جاءنی رجل عالم، میں نے جاء کی نسبت کی رجل کی طرف جو موصوف ہو رہا تھا عالم کے ساتھ، تو معلوم ہوا اس رجل کا عالم ہونا پہلے ہے اور مجیئت کی نسبت اس کے بعد ہے. یہاں بھی اسی طرح ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے، تو وضع کی نسبت ہو گئی کس چیز کی طرف؟ معنی مفرد کی طرف. تو وہاں وہ تو پہلے ہی مقید ہے، وہ معنی اس کی صفت کیا رہی ہے؟ مفرد. تو معلوم ہوا یہ اس کی صفت مقدم ہے وضع سے، یعنی معلوم ہوا معنی وضع سے پہلے ہی افراد و ترکیب سے متصف ہوتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. وضع کے بعد وہ متصف ہوتا ہے افراد و ترکیب سے، اس سے پہلے نہیں. کیونکہ افراد و ترکیب کس کو کہتے تھے؟ اگر جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرے تو لفظ بھی مرکب اور معنی بھی مرکب، اور اگر جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو لفظ بھی مفرد اور معنی بھی مفرد. تو یہاں دیکھو دلالت آ رہی ہے، اور لفظ کی معنی پر دلالت ہوگی ہی تب جب اس میں کیا پائی جائے، جب اس میں وضع پائی جائے، جب اس میں وضع پائی جائے. تو معلوم ہوا افراد و ترکیب کے لیے دلالت ضروری ہے اسی سے پتا چلتا ہے اور دلالت کے لیے وضع ضروری ہے اسی سے پتا اسی کی وجہ سے پھر وہ دلالت کرے گا تو معلوم ہوا وضع مقدم ہے کس پر افراد اور ترکیب پر تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ جو معنی کو موصوف کیا گیا مفرد کی صفت کے ساتھ یہ مجاز بالمشارفہ ہے مجاز بیل مشارفہ ہے یہ یوں کہیں کہ یہ باعتبار ما یعولو کے ہے چونکہ وضع کے بعد معنی نے متصف ہونا تھا افراد کے ساتھ اس کا معنی کا افراد کے ساتھ متصف ہونا قریب تھا تو پہلے سے ہی اس کی صفت مفرد لے آئے بھائی جیسے کہ اس حدیث میں ہے من قتل قتیلا فلہو سلبوہ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اس کے لیے اس سے لوٹا ہوا مال ہے اس کے لیے اس سے مقتول سے چھینا ہوا مال ہے تو یہاں پر وہ زندہ کو کیا کہہ دیا گیا مقتول چونکہ اس کا قتل قریب ہے اس لیے ابھی سے اس کو کس سے تعبیر کر دیا گیا مقتول کے لفظ کے ساتھ تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز بل مشارفہ تو یہاں پر بھی معنی کو جو افراد کی قید کے ساتھ موصوف کیا گیا اس میں مجاز بل مشارفہ ہے یوں کہو یہ بعتبار ما یعولو کے بھائی بعتبار ما یعولو کے یعنی جس حالت کی طرف یہ لوٹنے والا ہے جس صفت کے ساتھ یہ متصف ہونے والا ہے چونکہ اس کے ساتھ متصف ہونے کے قریب ہے لہذا ابھی سے اس کو کیا کہہ دیا مفرد کہہ دیا دوسری ترکیب یہاں یہ تھی کہ مفرد ان کو مرفوع پڑا جائے اس صورت میں یہ صفت بنے گی لفظ ان کی موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع تو لفظ ان کی گویا دو صفتیں آ گئیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنا ایک صفت اور مفرد دوسری صفت بھائی تو یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ دو صفتیں لائے صاحب کافیہ لفظ ان کی ایک ماضی کے صیغے کے ساتھ اور ایک مفرد اسم کی صورت میں لے کر آئے تو اس میں کسی نقطے کا بیان ضروری ہے صاحب کافیہ جیسے فصیح و بلیغ انسان وہ دو صفتوں میں سے ایک کو ماضی کی صورت میں لائے ہیں اور ایک کو اسم کی صورت میں تو یقیناً اس میں کسی نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے نقطہ کہتے ہیں باریک بات کو گہری بات بھائی نقطہ نون ہے کاف چھوٹا ہے تا ہے دو نقطوں والی بھائی نقطہ تن اور ایک ہوتا ہے نقطہ نون قاف دو نقطوں والا اور طا ہے بھائی طا اور پھر آگے تا مربوطہ ہے نقطہ تن وہ جو قلم سے آپ نقطہ لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نقطہ اور یہ جو نقطہ ہوتا ہے چھوٹے قاف کے ساتھ اس یہ گہری اور باریک بات کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایک صفت کو ماضی لے کر آئے اور ایک صفت کو اسم کی صورت میں مفرد کی صورت میں لے کر آئے تو اس میں کوئی نقطہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کسی گہری بات کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ گہری بات کیا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک صفت ہے لفظ کی وضع اور ایک صفت کیا ہے مفرد ہونا وضع مقدم ہے کیونکہ اس کو ماضی کے صیغے سے کے ساتھ ذکر کیا اور ماضی گزرے ہوئے زمانے میں ہوتی ہے یعنی پہلے ہوتی ہے تو معلوم ہوا وضع پہلے ہے اور اس کے بعد اس کا مفرد ہونا ہے یعنی وضع مقدم ہوتی ہے افراد و ترکیب پر تیسرا احتمال یہ تھا کہ مفردن جو ہے اس کو منصوب پڑا جائے کہتے ہیں اگرچہ رسم الخط اس کی مدد نہیں کرتا رسم الخط اس کے موافق نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر یہ منصوب ہو تو پھر اس صورت میں الف لکھنا چاہیے لیکن مفردن کے آخر میں تو الف نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر اس احتمال کو لیا جائے تو اس صورت میں یہ حال بنے گا یا تو وضع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نائب الفاعل اس سے حال بنے گا یا لمعنن جو ہے یہ معنن سے حال بنے گا اس پر اشکال ہوا کہ بھائی وضع کی ہوا ضمیر سے تو اس کا حال بننا صحیح ہے کیونکہ وہ نائب الفاعل ہے اور نائب الفاعل بھی کس کے درجے میں ہوتا ہے فاعل کے درجے میں ہوتا ہے اور صاحب کافیہ کا مذہب کیا ہے حال صرف فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے تو ہوا ضمیر جو ہے وضع کے اندر وہ بھی نائب الفاعل ہے تو گویا فاعل کے درجے میں ہے فاعل والا حکم ہے تو اس سے تو مفردن کا حال آنا صحیح لیکن لمعنن معنن سے حال آنا تو صحیح نہیں کیونکہ یہ تو مجرور ہے نہ تو یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول بھی ہی ہے تو میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ فعل کے ساتھ جو حرف جر استعمال ہوتا ہے یہ دراصل اس فعل کو متعدی بنانے کے لیے حروف جارہ اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کبھی فعل کے ساتھ فی آئے گا کبھی با آئے گی کبھی لام آئے گا کبھی من آئے گا یہ سارے کیا ہیں फेल इनके जरिए मुतअद्दी हो रहा है, यानी कोई इसम है फेल उसमें अमल करना चाहता है या आप उसको अमल देना चाहते हैं लेकिन फेल बराह रास्त उसमें अमल नहीं कर सकता तो फिर हुरूफ़े जार्रा का सहारा लिया जाता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी ज़रबतु ज़ैदन, अब मैं बतलाना चाहता हूं मैंने ज़ैद की लाठी से पिटाई की तो मैं लाठी का लफ्ज़ भी साथ लाना चाहता हूं, ज़रबतु ज़ैदन अल असा, लेकिन अल असा मैं नहीं ला सकता क्योंकि ज़रबतु एक मफूल भी ही को नसब दे सकता है, दो को नसब नहीं दे सकता और एक मफूल भी ही तो ज़ैदन आ चुका है और मैं तो अल असा को भी लाना चाहता हूं, उसको भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं बतलाना चाहता हूं कि यह पिटाई मैंने लाठी से की है, तो फिर इस सूरत में जब फेल बराह रास्त एक चीज में अमल न कर सके तो फिर हुरूफ़े जार्रा का सहारा लिया जाता है। तो अब मैं कहूंगा ज़रबतु ज़ैदन बिल आसा, तो ये बिल आसा जार मजरूर मिलकर मुतालिक हो जाएंगे ज़रबतु फेल के साथ। तो अब याद रखो ये जो हुरूफ़े जार्रा जब किसी फेल से मुतालिक होते हैं तो इनका जो मदखूल है जिस पर यह दाखिल हुए हैं वह भी मफूल बिही होता है, वो भी मफूल बिही होता है, अलबत्ता इसको मफूल बिही गैर सरीह कहते हैं, यानी वाज़ह लफ्जों में ये मफूल बिही नहीं है, ये तो मजरूर है। तो एक मफूल बिही सरीह होता है यानी वाज़ह साफ लफ्जों में कि जिस पर नसब आ रहा है, और एक मफूल बिही गैर सरीह होता है जो हर्फ जर के जरिए किसी फेल या शिबे फेल से मुतालिक हो तो उसको भी क्या कहते हैं मफूल बिही। तो यहां भी लिमानन किसे मुतालिक है वुज़िआ से हर्फ जर के वास्ते से तो यह भी मफूल बिही है अलबत्ता गैर सरीह है। और हाल भी किसकी हालत बयान करने के लिए आता है फाइल या मफूल बिही की, तो यह भी मफूल बिही है यह मानन, लिहाजा इसे मुफरदन हाल का आना सही है तो यह मफूल बिही कहलाएंगे। हत्ता कि फी वगैरह जो जुड़ेगा वह भी मफूल बिही कहलाएगा, ज़रबतु ज़ैदन फिद्दारी, ज़रबतु ज़ैदन फिद्दारी, ये अद्दार भी क्या है ज़रबतु के लिए मफूल बिही है गैर सरीह, वही एक ज़ैदन है वो मफूल बिही सरीह है और अद्दार क्या है मफूल बिही गैर सरीह है भाई। फिर मैंने आपको ये भी बतलाया था कि ये जो हुरूफ जार्रा जो अफेल और शिबे फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं इनको उस फेल या शिबे फेल का सिला कहते हैं, सिला स्वाद लाम और गोलता है भाई ताय मरबूता, इसको सिला कहते हैं। और फिर तफसील बयान की थी कि सिला का लफ्ज इल्मे नहव में तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक मौसूल का सिला, दूसरा सिला बमाने जायद के, कुरान में कोई लफ्ज जायद हो तो उसके लिए क्या लफ्ज बोलते हैं कि यह सिला है बतौर अदब के, और एक सिला वो हर्फ जर जिसके लिए कोई फेल मुतअद्दी होता है उसको उस फेल का सिला कहते हैं। और फिर मैंने यह भी बताया था कि मौसूल का सिला, मौसूल का सिला कि मौसूल दो किस्म पर है, एक इसमें मौसूल है एक हर्फ मौसूल है, इसमें मौसूल क्या है अल्लजी वगैरह और इसके बाद सिला आता है, अल्लजी का माना वो जो के, तो इसके साथ जब तक सिला नहीं मिलेगा इसका माना समझ में नहीं आएगा। मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अल्लजी, आया था वो जो के, आया था वो जो के, आप कहेंगे भाई बात पूरी नहीं, हां जब मैं इस मौसूल का सिला ले आऊंगा तो बात पूरी हो जाएगी, जा अल्लजी ज़ारबा का, आया वो शख्स जिसने आपकी पिटाई की थी, अब ये ज़ारबा का सिला है किसका अल्लदी का, तो मौसूल सिला मिलकर ये फाइल हुए किसके लिए जा के लिए, तो आया वो शख्स जिसने आपकी पिटाई की थी, अब बात देखो पूरी हो गई। तो इसमें मौसूल को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो उसके साथ सिला जरूर जोड़ेंगे, इसमें मौसूल जब भी कलाम में आए आगे उसके साथ जुमला होगा उसको उसका सिला बनाएं और फिर उसके बाद उसको चाहे फाइल बनाए मुब्तदा बनाए सिफत बनाए जो भी बनाना चाहते हैं उसके बाद बनाए। तो इसमें मौसूल के लिए जैसे सिले का होना जरूरी इसी तरह हर्फ मौसूल के लिए भी सिले का होना जरूरी है, और हर्फ मौसूल तीन हैं अन मा और अन्ना, अन मा और अन्ना भाई, यही हुरूफ मस्दरिया जो आपने पढ़े हैं, हुरूफ मस्दरिया जो आपने पढ़े हैं नहव की किताबों में तीन हैं मा अन और अन्ना, ये हुरूफ मस्दरिया हैं, ये जिस जुमले पर दाखिल होते हैं उसको मस्दर के माना में कर देते हैं, मा और अन ये जुमला फ़िअलिया पर दाखिल होते हैं और अन्ना हुरूफ मुशब्बा बिलफेल में से है, ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, इसके लिए एक इसम चाहिए और एक खबर। तो ये तीनों क्या करते हैं, जुमले को मस्दर के माना में कर देते हैं। मा और अन किस पर दाखिल होते हैं, जुमला फेलिया पर, और अन्ना किस पर दाखिल होता है, जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। तो ये जो हरूफ मस्दरिया हैं इनको हरफ मौसूल कहते हैं। ये किस पर दाखिल हुए, जुमले पर, तो जो जुमला है वो इनका सिला कहलाता है, वो जुमला इनका सिला कहलाता है। मा और अन के लिए सिला जुमला फेलिया आता है, और अन्ना के लिए सिला जो है जुमला इस्मिया आता है। मालूम हुआ सिला जो है इसमें मौसूल का भी आता है और हर्फ मौसूल का भी आता है। फिर इनमें फर्क यह है कि इसमें मौसूल का जो सिला आएगा उसमें रबत जरूरी है, उसमें कोई आयत कोई जमीर होनी चाहिए जो इसमें मौसूल की तरफ लौटे, जबकि हर्फ मौसूल का जो सिला है वह आयत का मोहताज नहीं है, वहां आयत नहीं आएगा। अच्छा, तो बात चल रही थी कि मुफरदन को अगर मंसूब पढ़ा जाए तो इस सूरत में फिर यह हाल बनेगा। क्या बनेगा, हाल बनेगा, या तो वुजिया की हुआ जमीर से जो नाइबुल फाइल है, या लिमानन से जो कि मफूल बिही गैर सरीह है। इन दोनों में से एक किसी एक से आप हाल बना सकते हैं। इस पर फिर इश्काल हुआ था, इश्काल ये कि हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है, तो हाल क्या है मुफरदन और आमिल जुलहाल क्या है वुजिया, तो वुजिया हुआ आमिल जुलहाल और मुफरदन हुआ हाल, और जाबता है कि हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है, एक होना चाहिए। हालांकि आपने अभी हमें बताया कि वजा मुकद्दम है इफरादो तरकीब पर, किसी लफ्ज को मुफरद या मुरक्कब कहना या इसी तरह किसी माना को मुफरद या मुरक्कब कहना यह वजा के बाद होगा, किसके वजा के बाद। अब हम देखेंगे कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इफराद तरकीब मुअख्खर है और वजा मुकद्दम है, तो दोनों का जमाना एक नहीं। हालांकि हाल के अंदर क्या शर्त थी कि हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक हो, तो उसका जवाब भी मैंने जिक्र किया था कि यहां पर वजा को इफराद और तरकीब पर तकद्दुम जाती हासिल है, तकद्दुम जमानी नहीं। तकद्दुम जमानी यह कि एक चीज पहले जमाने में हो और दूसरी बाद में हो। मसलन मेरे पास जैद भी आया और अमर भी आया, जैद आज आया है, अमर गुजश्ता कल आया था, पहले आया था, तो देखो अमर का आना पहले है, उसको तकद्दुम जमानी हासिल है। और एक है तकद्दुम जाती, तकद्दुम जाती यह है कि एक चीज जात के एतबार से दूसरी चीज से मुकद्दम हो, और यह चीज उस दूसरी चीज के लिए इल्लत है, यह है तो दूसरी चीज भी है, यह नहीं तो दूसरी चीज भी नहीं। एक है इल्लत और एक है सबब, दोनों में फर्क जानते हो। इल्लत जब पाई जाए तो मालूल का पाया जाना जरूरी है, इल्लत हो और मालूल ना हो यह हो ही नहीं सकता। सूरज जब भी निकलेगा दिन जरूर होगा, सूरज निकले और दिन ना हो यह हो ही नहीं सकता। चाबी जब भी घूमेगी ताला जरूर खुलेगा, चाबी घूमे और ताला ना खुले यह हो ही नहीं सकता। तो इल्लत जब भी पाई जाए मालूल का होना जरूरी, जबकि सबब सबब भी एक चीज तक पहुंचाता है, सबब होगा तो मुसबब पाया जाएगा, लेकिन सबब के पाए जाते हुए मुसबब का होना जरूरी नहीं है, सबब के पाए जाते हुए मुसबब का होना जरूरी नहीं। अगर एक चीज के पाए जाने से दूसरी चीज का पाया जाना जरूरी हो तो पहली चीज को इल्लत और दूसरी को मालूल। तो यहां पर भी तकद्दुम जाती में बयान कर रहा था, तकद्दुम जाती यह है कि एक चीज जात के एतबार से दूसरी चीज पर मुकद्दम हो और यह उस चीज के लिए इल्लत हो, यह है तो वह दूसरी चीज भी है, यह नहीं तो दूसरी चीज भी नहीं है। जैसे चाबी का घुमाना यह इल्लत है ताले के खुलने के लिए, तो चाबी का जो घूमना है इसको तकद्दुम जाती हासिल है ताले के खुलने पर, चाबी का घूमना यह मुकद्दम है और ताले का खुलना मुअख्खर है, लेकिन यह तकद्दुम जाती है, जमाने के एतबार से तकद्दुम नहीं है। जो जो चाबी घूमती जा रही है ताला साथ साथ खुलता जा रहा है, दोनों का जमाना बिल्कुल एक है। तो जात के एतबार से चाबी का घुमाना मुकद्दम है, जमाने के एतबार से मुकद्दम नहीं है, इसको तकद्दुम जाती कहते हैं। इसी तरह सूरज का निकलना यह इल्लत है दिन के होने के लिए, तो सूरज के निकलने को तकद्दुम जाती हासिल है, किस पर, दिन के होने पर, जमाने के एतबार से यह मुकद्दम नहीं है, बल्कि दोनों का जमाना एक है। जो जो सूरज निकलता जा रहा है साथ साथ दिन होता जा रहा है। तो यहां पर भी ये जो वजह को तकद्दुम हासिल है किस पर, افراد و ترکیب پر، یہ تقدم ذاتی ہے، تقدم زمانی نہیں، صرف ذات کے اعتبار سے وضع مقدم ہے افراد پر، زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں، زمانہ دونوں کا ایک ہے، جب زمانہ دونوں کا ایک ہے تو مفرد کا حال ہونا صحیح ہو گیا، کیونکہ وضع اور افراد دونوں کا زمانہ ایک ہوا، حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہے، تو اس کا حال ہونا صحیح ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ جو افراد کی قید لگائی ہے یہ مرکبات کو نکالنے کے لیے ہے، چاہے مرکبات کلامی ہو چاہے مرکبات غیر کلامی ہو۔ لہذا جب مفرد کی قید لگائی تو الرجل، قائمتن اور بصری جیسے الفاظ کلمہ کی تعریف سے نکل گئے، کیونکہ الرجل میں الف لام جو ہے تعریف اور تعیین پر دلالت کر رہا ہے، اور رجل رجل ہونے پر دلالت کر رہا ہے، قائمتن میں قائمن قیام پر دلالت کر رہی ہے صفت، اور تاء مربوطہ جو ہے گول تا وہ تانیث پر دلالت کر رہی ہے، بصریون کے اندر بصرہ شہر پر دلالت کر رہا ہے اور یا اس شہر کی طرف نسبت پر دلالت کر رہی ہے، بصریون یعنی بصرہ شہر والا۔ تو دیکھو یہاں جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ مرکب ہوا، یہ لفظ بھی مرکب اور یہ معنی بھی مرکب، تو یہ کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئے، کیونکہ کلمہ کی تعریف میں مفرد کی قید آ گئی تھی کہ وہ لفظ یا وہ معنی کیا ہونا چاہیے، مفرد ہونا چاہیے، اور یہ ان میں لفظ بھی مرکب ہے اور معنی بھی مرکب ہے۔ جبکہ عبداللہ جیسا لفظ جب وہ علم ہو، کسی کا نام ہو، وہ ابھی بھی داخل ہے، اگرچہ اس میں لفظ کے اندر وحدت نہیں، لفظ تو دو ہیں، ایک لفظ عبد ہے ایک لفظ اللہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہاں وحدت ہے بھائی، کہ معنی ایک ہی ہے، عبداللہ ایک ہی ذات کا نام ہے، جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا۔ اور پھر اس کے بعد شارح جامی نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ جو شخص سمجھدار ہے اور علم نحو کی غرض کو سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو بہتر تھا، عبداللہ کو نکالنا چاہیے تھا، اس کو کلیمہ نہیں کہنا چاہیے، اور الرجل بصری اور قائمتن کو کلیمہ کہنا چاہیے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ کہتے ہیں نحوی کی اصل توجہ جو ہے وہ الفاظ کی طرف ہوتی ہے، وہ الفاظ کی بحث کرتا ہے کہ کون سا لفظ معرب ہے، کون سا مبنی ہے، پھر معرب ہے تو اس پر کون سا اعراب آئے گا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کیسے جوڑنا ہے، وہ لفظوں کی بحث کرتا ہے، معنی کی طرف بھی اس کی توجہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ لفظ کس پر دلالت کرتے ہیں، معنی پر، تو معنی کی طرف بھی اس کی توجہ ہوتی ہے، لیکن اصل توجہ کس کی طرف ہے، لفظوں کی طرف، معنی کی طرف توجہ تبعن ہے، کیونکہ ہم لفظ ان پر دلالت کر رہے ہیں، تو نحوی کی اصل توجہ لفظوں کی طرف ہے۔ اور لفظوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو الرجل اس کو ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے شدت امتزاج کی وجہ سے، یہ الف لام اور رجل ایسے جڑ گئے، اتنا مضبوط جوڑ ان میں آ گیا کہ ان کو کیا شمار کیا جاتا ہے، ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے، دو لفظ شمار نہیں کیے جاتے، اور اسی لیے اس پر ایک اعراب آتا ہے، دو اعراب نہیں آتے۔ لہذا اس جب یہ ایک لفظ ہے اور ایک اعراب آ رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کو کلمہ کہنا چاہیے، اس کو کیا کہنا چاہیے، ایک لفظ ہے، اعراب بھی ایک، اور نحوی کی توجہ بھی کس کی طرف ہوتی ہے، الفاظ کی طرف، تو الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک لفظ ہے، اور اعراب بھی کتنے، ایک، تو لہذا اس کو کلمہ کہنا چاہیے، لیکن آپ نے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو کلمہ نہیں کہا، کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، تو آپ نے معنی کی وجہ سے اس کو کلمہ کی تعریف سے خارج کر دیا، حالانکہ نحوی کی توجہ کس کی طرف، لفظ کی طرف، اور لفظوں کے اعتبار سے یہ لفظ بھی ایک شمار ہوتا ہے اور اعراب بھی ایک آتا ہے، تو اس کو کلمہ کہنا چاہیے۔ اور عبداللہ اس کو آپ نے معنی کی وجہ سے آپ نے مفرد کہہ دیا، عبداللہ میں تو دو لفظ ہیں لیکن چونکہ اس کا معنی ایک ہے، وہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے، جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، تو آپ نے اس معنی کی وجہ سے اس کو کلمہ میں داخل کر دیا، حالانکہ اس پر دو اعراب آتے ہیں، تو اس کو کلمہ کی تعریف سے خارج ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ ایک تعریف ہے صاحب کافیہ کی اور ایک تعریف ہے صاحب مفصل کی، صاحب کافیہ نے لفظن ذکر کیا ہے اور صاحب مفصل نے لفظتن ذکر کیا ہے اپنی تعریف میں، لفظتن کا معنی ہے ایک لفظ، मालूम हुआ साहिब मुफस्सल के नजदीक वहदत लफ्ज भी जरूरी है, कलीमा के अंदर एक लफ्ज होना चाहिए। और आगे माना की सिफत मुफरदीन भी वो लेकर आए हैं, मालूम हुआ माना भी मुफरद होना चाहिए, उसमें भी वहदत होनी चाहिए। तो साहिब मुफस्सल के नजदीक कलीमा में वहदत लफ्ज भी जरूरी, वहदत माना भी जरूरी, जबकि साहिब काफिया ने लफ्जतुन नहीं कहा, लफ्जुन कहा है। तो इनके नजदीक वहदत लफ्ज तो जरूरी नहीं लेकिन वहदत माना जरूरी है। तो साहिब काफिया की तारीफ में कहते हैं दो खराबियां इस एतबार से लाजिम आती हैं। साहिब काफिया के नजदीक वहदत लफ्ज जरूरी नहीं, जब लफ्ज एक होना जरूरी नहीं तो अब्दुल्ला दाखिल हो गया जब वो आलम हो। लफ्ज तो दो हैं लेकिन उन्होंने तो क्या कहा, लफ्ज एक होना जरूरी नहीं, हालांकि इसको क्या होना चाहिए था, कलीमा से खारिज होना चाहिए था। तो एक खराबी ये, और दूसरी खराबी क्या कि साहिब काफिया ने माना के साथ मुफरत की कैद लगाकर अर्रजुल, कायमतुन और बसरी जैसी मिसालों को निकाल दिया, हालांकि ये तो एक लफ्ज है और इन पर एक एराब आता है, इनको दाखिल होना चाहिए था कलीमा की तारीफ में। तो अब्दुल्ला को खारिज होना चाहिए था, उसको दाखिल कर दिया, और ये अर्रजुलो और कायमतुन और बसरी को दाखिल होना चाहिए था, इनको खारिज कर दिया। तो ये दो खलल हैं साहिब काफिया की तारीफ में, जबकि साहिब मुफस्सल उन्होंने लफ्जतुन की कैद लगाई तो उसके जरिए अब्दुल्ला को निकाल दिया। तो ये खराबी तो वहां नहीं है, अब्दुल्ला को खारिज होना चाहिए था क्योंकि दो लफ्ज हैं, एराब भी दो आ रहे हैं, इसको कलीमा नहीं कहना चाहिए, और उन्होंने भी उसको निकाल दिया कि ये कलीमा नहीं है क्योंकि ये लफ्जतुन नहीं है, ये तो लफ्जतैन है। कितने लफ्ज हैं, दो लफ्ज हैं, तो ये निकल गए। और फिर लेकिन उन्होंने आगे मुफरदीन की जो कैद लगाई कि माना क्या होना चाहिए मुफरद, उसके जरिए उन्होंने अर्रजुल, कायमतुन और बसरी वगैरह को निकाल दिया, हालांकि इनको दाखिल होना चाहिए था। तो अब्दुल्ला को निकाल दिया वो तो ठीक है, ये खलल तो इसमें नहीं, लेकिन अर्रजुल, बसरी और कायमा को जो खारिज कर दिया, इनको दाखिल होना चाहिए था, तो एक खलल है। तो साहिब मुफस्सल की तारीफ में गोया एक खलल या एक कमी है, और साहिब काफिया की तारीफ में दो खलल हैं। भाई ये साहिब जामी ने अपनी राय जिक्र की कि इस तरह अब्दुल्ला को निकालना चाहिए था और अर्रजुल और बसरी और कायमा को दाखिल करना चाहिए था। अब आगे सबक देखिए भाई, वालम अन अलवजायस्तल जिमुद दलालत अली अन दलालत कौन शय बिहैसु युफहमु मिन्हु शयउन आखरु फमता तहक्कक अलवज़ तहक्ककत अद्दलालत फबाद ज़िक्र अलवज़ ला हाजत इला ज़िक्र अद्दलालत कमा वक़अ फी हादल किताब। साहिब काफिया ने जो कलीमा की तारीफ की वो भी गुजर गई कि अलकलीमा तो लफ्जों वुज़िअ लिमाना मुफ़रदिन, और साहिब मुफस्सल ने जो कलीमा की तारीफ की वो भी साहिब जामी ने जिक्र कर दी थी। ये गुज़श्ता सबक के बिल्कुल आखिर में आया था कि हिया लफ्जतु दालतु अला माना मुफ़रदिन बिल वज़ई। तो ये जो साहिब मुफस्सल ने तारीफ की इसके अंदर दालतुन का लफ्ज आ रहा है, यानी दलालत का लफ्ज आ रहा है, जबकि साहिब काफिया की तारीफ में दलालत का लफ्ज नहीं आया। तो तालिब इलम के जहन में एतराज पैदा हो सकता है कि साहिब काफिया ने दलालत का लफ्ज क्यों जिक्र नहीं किया, अगर यह लफ्ज जरूरी था तो साहिब काफिया को जिक्र करना चाहिए था, और अगर जरूरी नहीं था तो फिर साहिब मुफस्सल ने इस लफ्ज को क्यों जिक्र किया। तो अब साहिब जामी उसकी तफसील बतलाएंगे। भाई पहले वजा और दलालत को समझ लें, मैंने पहले भी बयान किया था कि दलालत किसे कहते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज का पता चल जाए, इसको दलालत कहते हैं। आपने दूर से धुआं उठते हुए देखा, आप समझ गए कि नीचे आग जल रही है। इसी तरह आपने देखा कि कमरे के अंदर खिड़की से धूप आ रही है, आप समझ गए कि सूरज निकल आया है। तो ये इसको कहते हैं दलालत, के एक चीज से दूसरी चीज का पता चल जाए, धुएं से आग का पता चला यह है दलालत, धूप से सूरज के निकलने का पता चला यह है दलालत। फिर इसी दलालत में कभी कभार वजह भी आ जाती है, वजह के एक चीज को दूसरी चीज के साथ खास कर देना कि पहली चीज दूसरी पर दलालत करे। जैसे ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूं ये उर्दू जुबान वालों ने मुख्तलिफ चीजों के लिए खास कर दिए हैं, और आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ किस माना के लिए वज़ा है, चुनांचे मैं बोलता जा रहा हूं और आप इसका माना समझते जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह लफ्ज़ किस माना के लिए वज़ा है। मैं जूं ही वो लफ्ज़ बोलता हूं यह लफ्ज़ उस माना पर दलालत कर देता है और आपको वो माना समझ में आ जाता है। मसलन मैंने कहा जैद, अब जैद का लफ्ज़ वज़ा किया गया है, आपका एक साथी है उसका नाम है जैद, तो जैसे ही मैंने जैद कहा आपके जहन में किसकी सूरत आ गई, जैद की सूरत आ गई। तो देखो लफ्ज जैद ने किस पर दलालत की, जात जैद पर, और खुद ब खुद की या इसके लिए इस लफ्ज को वजा किया गया है, वजा किया गया है। तो जहां भी वजा होगी वहां दलालत जरूर होगी, वजा का मकसद ही दलालत होता है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ खास करने का मकसद ही यह है कि पहली चीज से दूसरी चीज समझ में आ जाए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और सड़क पर सुर्ख लाइट जलते ही आप गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि सुर्ख लाइट को वजा ही इसके लिए किया गया है कि इसको देखकर गाड़ी को रोक दिया जाए। तो ये सुर्ख लाइट ने दलालत की किस बात पर कि अब गाड़ी को रोक दो। तो वजा में होती ही दलालत है, अलबत्ता वजा के अंदर एक शय को दूसरी शय के साथ खास किया जाता है, यानी एक चीज दूसरी चीज पर खुद ब खुद दलालत नहीं करती बल्कि आपके या लोगों के मुकर्रर करने से वो उस पर दलालत करती है। तो इसको क्या कहते हैं, वजा। तो वजा के अंदर क्या जरूरी, दलालत जरूरी, लेकिन इसमें मुकर्रर करना जरूर पाया जाएगा कि आपने मुकर्रर किया हो, लोगों ने मुकर्रर किया हो, खुद ब खुद दलालत नहीं होगी। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ वजा को दलालत मुस्तलजम है, जहां वजा होगी वहां दलालत जरूर होगी, जहां वजा होगी वहां दलालत जरूर होगी, क्योंकि वजा का मकसद ही क्या होता है, दलालत, कि एक चीज दूसरी चीज पर दलालत करे। अलबत्ता इसमें वजा का दखल होता है कि आपने मुकरर किया या लोगों ने मुकरर किया है, खुद ब खुद यह दलालत नहीं। कुछ दलालतें खुद ब खुद होती हैं, वहां मुकरर करने का दखल नहीं है, जैसे धुआं देखा और आग का पता चल गया, यहां कोई मुकरर करना नहीं है, वजा नहीं है कि धुएं को हमने वजा किया है आग के लिए, नहीं, यानी इसमें वजा का दखल नहीं है, अकल खुद ही बतला देती है। जो शख्स भी धुआं देखेगा वह समझ जाता है कि नीचे आग जल रही है। तो मालूम हुआ दलालत है आम, कभी उसमें वजा होगी और कभी वजा नहीं होगी, जबकि वजा खास है, वजा जहां भी होगी उसके अंदर दलालत जरूर होगी। वजा का मकसद ही क्या होता है, दलालत उसमें मकसूद होती है। तो वजा मुस्तलजिम है दलालत को, वजा मुस्तलजिम है दलालत को। जब वजा का जिक्र आ गया तो दलालत का जिक्र भी आ गया, क्योंकि वजा होती ही किस लिए है, दलालत के लिए। तो साहिब काफिया ने कहा था अलकलीमतु लफ्जू वुज़िया, उन्होंने वजा को जिक्र कर दिया, जब वजा को जिक्र कर दिया तो वजा मुस्तलजिम है किसको, दलालत को, तो इसके अंदर ही दलालत आ गई, लिहाजा आप अलहदा दलालत जिक्र करने की जरूरत नहीं। जबकि साहिब मुफस्सल ने पहले दालतुन लफ्ज जिक्र किया, यानी दलालत को पहले जिक्र किया, और दलालत को वजा मुस्तलजिम नहीं, क्योंकि दलालत बगैर वजा के भी हो सकती है, तो वो मोहताज हुए कि बाद में फिर किसको जिक्र करें, वजा को, क्योंकि दलालत के साथ वजा लाजिम नहीं, तो दलालत जिक्र कर दी लेकिन वजा तो नहीं आई, तो बाद में फिर दोबारा किसको जिक्र करना पड़ा, वजा को जिक्र करना पड़ा। तो बाई लिहाज साहिब काफिया की तारीफ बेहतर है कि इन्होंने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया और उसे दोनों काम चला लिए, जबकि साहिब मुफस्सल को दलालत के बाद फिर वजा को भी जिक्र करना पड़ा। वालम तू जान ले कि अन्नल वजा यस्तलजिमु दलालता, कि वजा मुस्तलजिम है दलालत को, वजा मुस्तलजिम है दलालत को। क्या माना, वजा के साथ दलालत लाजिम है, जहां वजा आएगी वहां दलालत आ जाएगी। तू जान ले अन्नल वज़ा यस्तलज़िमु दलालता, के वज़ा जो है मुस्तलज़िम है दलालत को। ले अन्न दलालता कौनु शैई बिहैसु युफ़हमु मिन्हु शैउन आखरु, इसलिए क्योंकि दलालत इसे कहते हैं कौनु शैई, एक शय का होना, बिहैसु इस तौर पर, युफ़हमु मिन्हु शैउन आखरु, कि उससे दूसरी चीज समझ में आए, एक शय का इस तौर पर होना कि उससे दूसरी शय समझ में आए, इसको क्या कहते हैं, दलालत कहते हैं। फमता तहक्कक़ल वज़्हु तहक्कक़त दलालतु, तो जब वजा पाई जाएगी तो दलालत पाई जाएगी, क्योंकि वजा में भी क्या होता है, दलालत होती है। फबाद जिक्रिल वजई ला हाजत इला दिक्री दलालती, लिहाजा वजा के जिक्र के बाद कोई जरूरत नहीं, कोई हाजत नहीं दलालत को जिक्र करने की। कमा वका फी हाजल किताबी, जैसे कि इस किताब यानी काफिया में वाक़ हुआ है। लाकिन न दलालत ला तस्तलजिमुल वजा, लेकिन दलालत वो मुस्तलजिम नहीं है वजा को, जहां भी दलालत हो वहां वजा पाई जाए जरूरी नहीं है। क्यों भाई दलालत के साथ वजा क्यों नहीं जरूरी? कहते हैं लि इम्कानी अन तकून बिल अक्ली, इसलिए क्योंकि मुमकिन है कि वो दलालत अकल की वजह से हो। का दलालति लफ्ज दैज़िनिल मस्मूई मिन वराइल जिदारी अला वजूदिल लाफिज़ी, जैसे लफ्ज दैज की दलालत वो लफ्ज दैज अल मस्मूई मिन वराइल जिदारी जो सुना गया है दीवार के पीछे से, इसकी दलालत अला वजूद लाफिजी, लफज बोलने वाले के वजूद पर, लफज बोलने वाले के वजूद पर। देखो ये मिसाल में लफ्ज ला रहे हैं, अलकलिमतुल लफ्जुन, क्योंकि लफ्ज की बात चल रही है ना, बतलाना ये चाहते हैं कि दलालत मुस्तलजिम नहीं है वजा को, यानी दलालत के साथ वजा लाजिम नहीं। जैसे धुएं को देखा आपको किसका पता चला? आग का। धूप को देखा तो किसका पता चला? सूरज का। तो इन्होंने धुएं की मिसाल यहां नहीं दी, बल्कि क्या कहा कि दीवार के पीछे से मसलन आप लफ्ज दैज सुनते हैं, दैज ये मकलूब है जैद का, यानी इसी जैद लफ्ज जैद को उलट दिया, उसमें जा या दाल थे तो फिर इसको उलट दिया, दाल को शुरू में ले आए, जा को आखिर में ले गए, तो क्या बन गया? दैज। तो मसलन आप दीवार के पीछे से लफ्ज दैज सुनते हैं, इसके सुनते ही आपको पता चल गया कि दीवार के पीछे कोई है, दीवार के पीछे। तो देखा अब इस लफ्ज ने दलालत की किस पर? बोलने वाले के वजूद पर। आपको पता चला कि नहीं चला पीछे कोई आदमी है? पता चल गया। लेकिन क्या यहां वजह है, क्या लफ्ज दैज को इसके लिए मुकरर किया गया है कि इससे दीवार के पीछे किसी आदमी का पता चलता है? नहीं, यहां देखो वजा नहीं है। तो लफ्ज ने दलालत तो की बोलने वाले के वजूद पर, लेकिन इस दलालत में वजा नहीं। तो दलालत तो पाई गई लेकिन यहां वजा नहीं है। मालूम हुआ दलालत मुस्तलजिम नहीं है वजा को, यानी दलालत के साथ वजा लाजिम नहीं। और देखो दीवार के पीछे उसने लफ्ज दैज कहा, दैज की मिसाल दी, जैद नहीं कहा, क्योंकि अगर वो लफ्ज जैद की मिसाल देते तो फिर उसमें तो दो दलालतें आ जानी थी। एक जैद का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में जैद की सूरत भी आ जाती, और दूसरा इस दीवार के पीछे किसी आदमी का पता भी चल जाता। तो यहां दो दलालतें थी, एक दलालत वज़ई थी, एक दलालत गैर वज़ई। वज़ई कौन सी? जो जैद लफ्ज होता उसने किस पर दलालत की? जात जैद पर। यह हुई दलालत वजई कि यह लफ्ज उसके लिए वजा किया गया है। और जो जैद सुनने से दीवार के पीछे आदमी का आपको पता चलता, यह दलालत गैर वजई थी, क्योंकि जैद का लफ्ज इसके लिए वजा नहीं है कि पता चले कि दीवार के पीछे कोई आदमी है। तो इसलिए लफ्ज जैद नहीं लाए, क्योंकि लफ्ज जैद लाते तो फिर दलालत वजई भी हो जाती और दलालत गैर वज़ई भी हो जाती। लिहाजा लफ्ज दैस लाए ताकि वज़ई रहे ही ना सिरे से। तो जब दैस सुना तो इसे आपको पता चल गया दीवार के पीछे कोई है, तो यह दलालत तो है लेकिन इसमें वजा नहीं है। इसी तरह कभी दलालत तबीयत की वजह से होती है, जैसे किसी को सीने में तकलीफ हुई और वह खांसता है और उह उह करता है, उह उह करता है, तो इससे सुनने वालों को पता चल गया कि इसको सीने में तकलीफ है यानी खांसी है। अब मुझे बताइए क्या ये उह उह का लफ्ज हमने सीने में तकलीफ पर दलालत करने के लिए वजा किया है? नहीं। सीने में अगर आपको तकलीफ हो तो आप किसी को बताने के लिए उह उह करते हैं या उसको बताते हैं कि मेरे सीने में तकलीफ है? उसको बताते हैं। ये उह उह इसके लिए वजा नहीं है। तो यहां उह उह ने दलालत की किस पर? सीने की तकलीफ पर, और इसमें वजा नहीं है। तो यहां देखो दलालत तो है لیکن وضع نہیں. معلوم ہوا دلالت مستلزم وضع نہیں, دلالت کے ساتھ وضع لازم نہیں, جہاں بھی دلالت پائی جائے وضع بھی ہو ایسا نہیں ہے. تو صاحب مفصل نے کس کو ذکر کیا تھا؟ پہلے دلالت کو, اور دلالت مستلزم وضع نہیں, تو لہذا ان کو وضع کو بعد میں الگ پھر ذکر کرنا پڑا. دوبارہ دیکھیے کتاب پر, لیکن نہ دلالت لا تستلزم الوضع, لیکن دلالت جو ہے وہ مستلزم وضع نہیں ہے. لامکان ان تکون بالعقل, اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دلالت عقل کی وجہ سے ہو. کا دلالت لفظ الدیزن المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ, جیسے کہ وہ لفظ دیس جو سنا گیا ہے من وراء الجدار, دیوار کے پیچھے سے, اس کی دلالت ہے علی وجود اللافظ, اس لفظ کو بولنے والے کے وجود پر. یہاں دلالت تو ہے لیکن وضع نہیں. وان تکون, اس کا عطف بھی اسی پر ہے پیچھے جو آیا تھا نا, ان تکون بالعقل, کیونکہ ممکن ہے وہ دلالت عقل کی وجہ سے ہو. وان تکون بالطبع, یا وہ دلالت طبیعت کی وجہ سے ہو. کا دلالت اح اح علی وجع الصدر, جیسے اح اح کی دلالت سینے کی تکلیف پر. وجع جیم پر فتحہ پڑھنا بھائی, علی وجع الصدر سینے کی تکلیف پر, سینے کے درد پر. اس کو اح اح پڑھنا بھی صحیح اور اح اح پڑھنا بھی صحیح, دونوں طرح. فبعد ذکر دلالتی لابد من ذکر الوضع, تو دلالت کے ذکر کرنے کے بعد ضروری ہے وضع کا ذکر. کما فی المفصل, جیسے کس کے اندر ہے؟ مفصل میں. انہوں نے دلالت کو پہلے ذکر کیا تو دلالت کے ساتھ تو وضع لازم نہیں, تو وضع تو ابھی بھی نہیں آئی, تو آگے ان کو وضع الگ ذکر کرنا پڑا. اور صاحب کافیہ نے کیا کیا؟ وضع کو ذکر کیا, اور وضع مستلزم دلالت ہے, تو جب اس وضع کے اندر ہی دلالت آ گئی تو پھر ان کو آگے دوبارہ دلالت کا لفظ ذکر کرنے کی حاجت پیش نہ آئی. معلوم ہوا صاحب کافیہ کی تعریف مختصر ہے اور بہتر ہے بھائی. آگے دیکھیے, وہیا ایل کلمت اسم وفعل وحرف اي منقسمة الى هذه الاقسام الثلاثة ومنحصرة فيها. بھئی پہلے کافیہ کی عبارت دیکھ لیں. ہم یوں کریں گے, پہلے کافیہ کی عبارت حل کر لیا کریں گے, کیونکہ کافیہ کی عبارت جامی کے اندر جب وہ شرح کرتے ہیں ایک ٹکڑا ایک جگہ آتا ہے, دوسرا ٹکڑا عبارت کا دوسری جگہ, دور دور چلے جاتے ہیں. تو پہلے کافیہ کی عبارت حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ کافیہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ شارح جامی اس کی کیا تقریر کرتے ہیں اور کیا نئے نئے نقطے بیان کرتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ذرا صرف یہ متن متن پر نظر رکھیے. وہی اسم و فعل و حرف لانها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا, الثان الحرف والاول اما ان يقترن باحد الازمنه الثلاثه او لا, الثاني الاسم والاول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. اب اسی کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں. کہتے ہیں وہی اسم و فعل و حرف, اور کلمہ جو ہے وہ اسم فعل اور حرف ہے. یہ کلمہ کی تقسیم کر رہے ہیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہیں, اسم فعل اور حرف. لانها, یہاں سے وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں. حصر کا معنی ہے بند کرنا, بند کرنا. تو کلمہ کی تین قسمیں بیان کی, تین قسمیں ہیں. تو سوال پیدا ہوا کہ صاحب کافیہ نے کلمہ کو تین قسموں میں کیوں بند کیا, یا یوں کہیں کہ کلمہ تین قسموں میں کیوں بند ہے. تو اب اس کی دلیل ذکر کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل حصر کہتے ہیں, یعنی تین قسموں میں بند کرنے کی دلیل. چند قسموں میں جب کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے کہ یہی قسمیں ہیں, اس کی اور قسمیں نہیں ہیں, تو پھر آگے دلیل ذکر کی جاتی ہے, تو اس کو دلیل حصر کہتے ہیں کہ ان قسموں میں اس چیز کو بند کرنے کی دلیل یہ ہے بھائی. تو یہ دلیل حصر ہے. لانها, کیونکہ کلمہ جو ہے, اما ان تدل علی معنی فی نفسها, یا تو وہ دلالت کرے گا کسی معنی پر, فی نفسها ای بی نفسها, خود بخود. کلمہ ادھر دیکھیے بھائی, کلمہ یا تو دلالت کرے گا کسی معنی پر خود بخود, یا دلالت نہیں کرے گا. खुद ब खुद दलालत करने का मतलब यह है कि किसी और कलीमे को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा जैद, फौरन आपके जहन में जैद की सूरत आ गई। मैंने कहा कलम, फौरन आपके जहन में एक लिखने वाला आला आ गया। मैंने कहा गिलास, फौरन आपके जहन में पानी पीने वाला एक बर्तन आ गया। तो दलील हसर जिक्र कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कलीमा या तो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करेगा या नहीं करेगा। खुद ब खुद दलालत करने का क्या माना कि किसी और लफ्ज को साथ मिलाने की जरूरत नहीं, यह खुद ही माना इसे समझ में आ रहा है। और अगर दूसरे कलीमे को साथ मिलाने की जरूरत है तो हम कहेंगे यह खुद ब खुद अपने माना पर दलालत नहीं करता बल्कि इसके साथ और लफ्जों को भी जोड़ना पड़ता है। जैसे इब्तिदा, इब्तिदा का क्या माना, शुरू करना। देखो इब्तिदा इसम है, मैंने जैसे ही कहा इब्तिदा आप इसका माना समझ गए कि इसका क्या माना है, शुरू करना। तो इसने अपने माना पर खुद ब खुद दलालत की। और एक है मिन, मिन हर्फ है और इसका माना भी है इब्तिदा, लेकिन मिन कहा मैंने तो आपको इससे इब्तिदा वाला माना समझ में नहीं आया। जब तक इसके साथ दूसरा लफ्ज नहीं मिलाएंगे इसका माना आपको समझ में नहीं आएगा। मसलन मैं कहता हूं सिर तो मीनल बसरत इलल कूफा, सारा यसीरु के माने चलना, मैं चला सिर तो मीनल बसरती बसरा से इलल कूफा, कहां तक, कूफा तक। सिर तो मीनल बसरती इलल कूफा, जी मुझे बताइए मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हो रही है, बसरा से। यह आपको किसने बताया, ये मिन लफ्ज से आपको पता चल गया कि चलने की इब्तिदा बसरा से हो रही है। और मेरे इस चलने की इंतहा कहां पर हो रही है, कूफा पर। ये आपको किसने बताया, किससे पता चला आपको, इला से। तो मिन का माना है इब्तिदा और इला का माना है इंतहा, लेकिन इस मिन को अकेला बोलें तो इससे इब्तिदा वाला माना समझ में नहीं आता। जब तक जिस चीज की इब्तिदा है उसको भी जिक्र ना किया जाए और जहां से इब्तिदा है उसको भी जिक्र ना किया जाए। इब्तिदा किसकी है, चलने की, तो वो सिर तो भी साथ जिक्र है। और कहां से है इब्तिदा, बसरा से, उसका जिक्र भी जरूरी है। सिर तो मीनल बसराती, मैं कहां से चला, बसरा से। तो जिस चीज की इब्तिदा है उसको भी जिक्र करना पड़ेगा, जहां से इब्तिदा है उसको भी जिक्र करना पड़ेगा, फिर मीन आपको बतलाएगा कि यह इब्तिदा बयान हो रही है इस चीज की और यहां से। मसलन मैं कहता हूं सिर तो मीनत दार इलल मस्जिद, मैं चला कहां से, घर से, कहां तक, मस्जिद तक। तो मालूम है मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हो रही है, घर से। किस चीज की इब्तिदा है, चलने की, और कहां से इब्तिदा है, घर से। देखा जिस चीज की इब्तिदा हो रही है उसको भी जिक्र किया जाए और जहां से इब्तिदा हो रही है उसको भी जिक्र किया जाए। अब मीन अपने माना इब्तिदा पर दलालत करेगा। तो मीन का माना है इब्तिदा, लेकिन मीन अपने माना पर अकेला दलालत नहीं करता बल्कि इसके साथ और लफ्जों को मिलाना भी जरूरी है। इसी तरह इला इंतहा के लिए आता है, लेकिन इला इला आप किसी को कहते रहें उसको इसका माना समझ में नहीं आएगा। जब तक जिस चीज की इंतहा हो रही है उसको भी जिक्र करें और जहां पर इंतहा हो रही है उसको भी जिक्र करें। किस चीज की इंतहा हो रही है, चलने की, तो वो सिर तो भी जिक्र है। और किस जगह पर हो रही है, कूफा में, तो वो कूफा का जिक्र भी जरूरी है। तो फिर ही इला का माना जो इंतहा है वो आपको समझ में आएगा। देखिए भाई किताब पर कहते हैं कलीमा जो है इसम है, फेल है और हर्फ है। लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ला अला मानन फी नफसिहा, इसलिए क्योंकि कलीमा या तो वो दलालत करेगा माना पर फी नफसिहा ऐ बी नफसिहा खुद ब खुद, औला या वो दलालत नहीं करेगा। असानिल हर्फु, दूसरा जो है वो हर्फ है। दूसरा कौन, दो बातें बयान हुई, कलीमा या तो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करेगा या नहीं करेगा। तो एक किस्म वो हुई जो दलालत करेगी, एक किस्म वो हुई जो दलालत अपने माना पर खुद ब खुद नहीं करेगी। तो ये सानी से ये मुराद है कि वो किस्म जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत ना करे, अल हर्फ, वो क्या है, हर्फ है। तो कहते हैं असान इल हर्फ, दूसरी किस्म हर्फ है। वल अव्वल, और पहली किस्म कौन सी किस्म, जो अपने माना पर खुद बखुद दलालत करे, तो कहते हैं वो पहली किस्म इम्मा अन यक्तरिना बि अहदिल अज़मिनति सलासा, या तो वो मिली हुई होगी तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, औला या मिली हुई नहीं होगी। असानी लिस्म, दूसरा इसम है। इधर देखिए, जो कलिमा अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है वो फिर दो किस्म पर, या तो उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला हुआ होगा या मिला हुआ नहीं होगा। अगर मिला हुआ हो तो ये पहली किस्म, और या मिला हुआ नहीं होगा ये दूसरी किस्म, तो ये दूसरी किस्म को इसम कहते हैं कि जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला हुआ नहीं होता। और पहली किस्म को क्या कहते हैं? पहली किस्म को फेल कहते हैं कि अपने माना पर खुद ब खुद भी दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना भी साथ मिला हुआ हो। जैसे मैंने कहा जाराबा, जाराबा से आपको एक तो पिटाई करने का माना भी समझ में आया और दूसरा जमाना भी समझ में आया कि कौन सा जमाना है, माजी का। इसी तरह या जरीबू, इससे आपको पिटाई करने का माना भी समझ में आया और जमाना भी समझ में आया कि हाल या इस्तकबाल वाला है। और इजरीब, इससे आपको जर्ब का माना भी समझ में आया कि पिटाई करने का हुक्म दिया जा रहा है और किस जमाने में है, मुस्तकबिल के जमाने में, तो जमाना भी समझ में आया। याद रखो, याद रखो, फेल का अपना माना अलग होता है, जमाना साथ अलग जुड़ा होता है। फेल का अपना माना अलग और जमाना उसके साथ अलग जुड़ा होता है। जैसे जाराबा, जाराबा का माना क्या? पिटाई करना। लेकिन जाराबा ये जो इसकी सूरत है ये जमाने पर दलालत कर रही है, तो फेल का अपना माना अलग होगा, जमाना अलग जुड़ा होगा, ऐन जमाने का वो नाम नहीं होगा। बात समझ में आ रही? जैसे लफ्ज माजी, अब आपसे कोई कहे माजी, देखो ये भी अपने माना पर खुद ब खुद दलालत कर रहा है। माजी का माना समझ में आ रहा है या नहीं? और नीज, तीन जमानों में से कोई जमाना भी है या नहीं इसके साथ, तो इसमें तीन जमानों में से एक जमाना यानी गुजश्ता जमाना भी है, तो इसको भी क्या कहना चाहिए? फेल। तो जवाब मैंने बतला दिया। जवाब क्या? कि फेल का अपना माना अलग होता है और जमाना अलग जुड़ा होता है, और माजी, माजी का तो अपना अलग कोई माना नहीं है, ये तो खुद उस जमाने का नाम है, लिहाजा ये फेल की तारीफ से क्या हो गया? खारिज। फेल का अपना माना हमेशा अलग और जमाना अलग जुड़ा होता है। या शराबू, क्या माना? पीना, शुरब का जिक्र हो रहा है, और किस, और जमाना अलग है, किस जमाने में? हाल या इस्तकबाल में। तो कहते हैं असानी लिस्म, दूसरी किस्म इसम है, यानी जिसके साथ जमाना मिला हुआ नहीं, वो कलीमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ नहीं, वो क्या है? इसम। वल अव्वलुल फ़िअलु, और पहला क्या है? फेल, जिसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी साथ मिला हुआ है। वकद उलिमा बिदाली का हद कुल्ल वाहिद मिन्हा, और तहकीक इस दलील हसर के जरिए जान लिया गया। ये जो दलील हसर हमने जिक्र की, साहिब काफिया फरमाते हैं, इसके जरिए यह बात मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई? हद कुल्ल वाहिद मिन्हा, इनमें से हर एक की तारीफ मालूम हो गई, इनमें से हर एक की तारीफ मालूम हो गई। हर्फ किसे कहते हैं? कि वह अपने माना पर खुद ब खुद दलालत नहीं करता। फेल किसे कहते हैं? वो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला होता है। इसम किसे कहते हैं? जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला हुआ नहीं होता। देखा, इससे तीनों की तारीफ भी समझ में आ गई। बात समझ में आ गई? अब आइए भाई शरा की मदद से अब इसको हल करें। वहिया अल कलिमत उस्मू व फिअलुन व हर्फुन ऐ मुनकसिमतुन इला हादिहिल अक्सामि सलासति व मुनहसिरतुन फीहा। वहिया, वहिया यहां वाव आया। बाज उलमा फरमाते हैं कि यह वाव आतिफा है भाई, वाव आतिफा जिसके जरिए एक चीज का दूसरी चीज पर आतफ किया जाता है। जो पहले आए उसको कहते हैं मातूफुन अलैही, यानी वो चीज जिस पर आतफ किया गया है, और जो बाद में आए उसको कहते हैं मातूफुन, यानी वो चीज जिसका आतफ किया गया है। तो यहां पर मा कबल में भी जुमला है, मा बाद में भी जुमला है, तो जुमले का जुमले पर आतफ किया गया है। याद रखो, एक जुमले का दूसरे जुमले पर आतफ करने के लिए जरूरी है कि दोनों के अंदर मुनासिबत हो, दोनों के मुस्नद में भी मुनासिबत हो और मुस्नद इलैह में भी मुनासिबत हो। और यहां पर मुनासिबत मौजूद है कि पहला जुमला क्या आया, अल कलिमतु लफ्जु वुज़िअ लिमअना मुफ़रदिन, इसमें कलिमा की तारीफ जिक्र हो रही है, और वही अस्मु व फ़िअलुन व हर्फुन, इसमें कलिमा की तकसीम हो रही है। तो दोनों जुमलों में मुनासिबत है कि दोनों में कलिमा की बात हो रही है और एक में कलिमा की तारीफ का बयान है और दूसरे में कलिमा के अफराद का बयान है, तो दोनों जुमलों में कलिमा का बयान हो रहा है, एक में तारीफ का बयान और एक में अफराद का बयान, तो दोनों जुमलों में मुनासिबत है, लिहाजा इस वाव को वाव आतिफा भी बनाया जा सकता है। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि यह वाव इस्तीनाफ है या वाव इब्तिदा है। इस्तीनाफ का माना है नए सिरे से कोई चीज शुरू करना। वाव इस्तीनाफ वो है जिससे कोई नई बात शुरू की जाए, जिसका माकबल से कोई रब्त नहीं होता, और इस वाव को उस कलाम के शुरू में लाया जाता है तहसीन लफ्ज के लिए, इबारत को हसीन बनाने के लिए। लेकिन यह वाव इस्तिनाफ और वाव इब्तिदा इनके अंदर जरूरी है कि जिस जुमले के शुरू में आप वाव इस्तिनाफ लाना चाहते हैं उससे माकबल एक जुमला मुफीदा का जिक्र जरूरी है। बिल्कुल कलाम आप शुरू कर रहे हैं और वहां पर आप वावे इब्तिदा या वावे इस्तिनाफ लाना चाहते हैं, उससे पहले कोई जुमला मुफीदा नहीं गुजरा, तो याद रखो यह दुरुस्त नहीं है। कलाम अरब में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कलाम की इब्तिदा में वाव को जिक्र किया जाए। तो वावे इस्तिनाफ और इब्तिदा नाम से आप यह ना समझ लें कि इसका नाम तो वावे इब्तिदा है, ये बिल्कुल कलाम के शुरू में भी ला सकते हैं, नहीं नहीं, वावे इस्तिनाफ और इब्तिदा इसलिए कहते हैं कि ये जुमले के शुरू में आया है और नीज इसके जरिए एक नई बात शुरू हो रही है जिसका माकबल से कोई रब्त नहीं है, कोई रब्त नहीं है, तो यह सिर्फ तहसीन लफ्ज के लिए आता है। लेकिन इससे पहले जुमला मुफीदा का होना जरूरी है, चाहे एक हो या ज्यादा हो, लेकिन माकबल में इसके जुमला मुफीदा का होना जरूरी है। तो ये जो वही अस्मु व फ़िअलुन व हर्फुन, ये जो वाव है इसको बाद उलमा ने कहा कि ये वावे इस्तीनाफ और वावे इब्तिदा है। वावे इस्तीनाफ और इब्तिदा जिसे तहसीन लफ्ज के लिए लाया जाता है और इसे माकबल जुमला मुफीदा का होना जरूरी है और ये माकबल कलाम से इसका कोई रब्त नहीं होता भाई। और फिर इसमें याद रखो ये वावे इस्तीनाफ और इब्तिदा एक ही चीज है, एक ही वाव के दो नाम हैं, इसको वावे इस्तीनाफ भी कहते हैं और वावे इब्तिदा भी, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि एक ही वाव के दो नाम हैं। और फिर इल्मे बलागत वाले उलमा के नजदीक, उनके नजदीक ये वावे इस्तीनाफ या वावे इब्तिदा ये हमेशा सवाल मुकद्दर के जवाब में लाया जाता है, यानी कोई सवाल वहां पैदा होता है उसके जवाब को जब जिक्र किया जाता है तो उसके शुरू में वावे इस्तीनाफ या इब्तिदा को जिक्र करते हैं। जबकि इल्मे नह वाले वो फरमाते हैं कि वावे इस्तीनाफ जो है वो आम है, चाहे वो सवाल मुकद्दर का जवाब हो या न हो, दोनों सूरतों में लाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए मकसूद सिर्फ तहसीन लफ्ज़ है, तज़यीन कलाम है, कलाम को मुजयन करना है, हसीन बनाना है। तो इल्मे मानी वालों के नजदीक ये वावे इस्तिनाफ हमेशा किसके जवाब में आएगा, सवाल मुकद्दर के जवाब में, और इल्मे नह वालों के नजदीक आम है, चाहे सवाल मुकद्दर वहां हो या ना हो, तो लिहाजा ये वही अस्मु व फ़िअलुन व हर्फुन, इसको वावे इस्तिनाफ भी बनाया जा सकता है। तो कहते हैं वहिया अयिल कलिमतु, वहिया तो है मतन काफिया का, और आगे अयिल कलिमतु ये इबारत शारह जामी लेकर आए, ये दरअसल जमीर का मर्जा बतलाना चाहते हैं कि हिया जमीर किसको राजे है, कलिमा को राजे है। और याद रखना ये जो अय के बाद आए ये माकबल से बदल बनता है, तो हिया हुआ मुबदल मिनहू और अल कलिमा क्या हुआ, बदल। ये अय हरफे तफसीर है, तो तुलबा कहते हैं माकबल वाला मुफस्सर और मा बाद जो अय के आए वो मुफस्सिर, वो तफसीर कर रहा है। हां बात तो ऐसी ही है, मुफस्सर और मुफस्सिर हैं ये, लेकिन मुफस्सर कहने से एराब का पता नहीं चलता, उसका तो कोई भी एराब हो सकता है, तो नहवी एतबार से, तरकीब के एतबार से ये जो ऐ से माकबल वाला है वो मुबदल मिनहू बनता है और माबाद वाला बदल। ये बात हमेशा याद रखना, ये हर जगह आपको इबारतों में काम आएगी। और बदल पर वही अराब आता है जो किस पर हो, मुबदल मिनहू पर। और यहां पर हिया क्या है, मरफू है, मुबतदा है। तो अयल कलिमतु, ये जो बदल कलिमा आया ये भी क्या होगा, मरफू होगा, दोनों पर एक ही एराब आएगा। कहते हैं वहिया, और ये यानी कि कलिमा इस्मु व फिअलु व हर्फुन, इसम है और फेल है और हर्फ है। यहां एक और जाबता याद रखिए, जाबता यह है कि जब भी जमीर दायर हो जाए बैनल मरजई वल खबर, तो दोनों में से किसी एक की भी रियायत रखना जायज है। जमीर किसके बीच में आ जाए, मरजा और खबर के बीच में। जैसे यहां पर देखें, वहिया स्मु व फिअलू व हर्फुन, हिया जमीर आई और यह हिया जमीर राजे है कलिमतुन को, और आगे इस्मु व फिअलू व हर्फुन इसकी खबर आ रही है। तो अगर मरजा को देखें तो अल कलिमतु मुअन्नस है, उसके साथ ताय मरबूता जुड़ी हुई है जो तानीस पर दलालत करती है, तो लिहाजा मर्जे को देखते हुए जमीर मुअन्नस लानी चाहिए हिया, जैसे कि साहिबे काफिया ही लेकर आए। और इसकी अगर खबर को देखें, इस्मु व फिअलु व हर्फुन, वो तो मुजक्कर है, उसके साथ तो कोई तानीस वगैरह की अलामत नहीं है, तो फिर जमीर हुआ लानी चाहिए खबर को देखते हुए, क्योंकि मुब्तदा खबर में मुताबकत होती है। तो उसको खबर को देखते हुए जमीर क्या लानी चाहिए, यहां पर मुजक्कर लानी चाहिए। तो मर्जे को देखें तो जमीर को मुअन्नस लाना चाहिए, क्योंकि अलकलिमा मुअन्नस है, और खबर को देखें तो जमीर को मुजक्कर लाना चाहिए, इस्मु व फिअलु व हर्फुन क्या है, मुजक्कर। तो ऐसे मौके पर जब जमीर बीच में आ जाए किसके, मर्जे के और खबर के, तो दोनों की रियायत रखना जायज है। आप चाहें तो मर्जे की रियायत रखें और आप चाहें तो खबर की रियायत रखें। साहिब काफिया ने मर्जे की रियायत रखी, अलकलिमा मुअन्नस था तो जमीर भी हिया लेकर आ गए। और अगर यहां पर खबर की रियायत रखी जाए तो उसकी भी रियायत रखी जा सकती है, और यूं भी कहा जा सकता है वह हुआ स्मु व फिअलु व हर्फुन। और कोई फिर पूछे कि हुआ जमीर किसको राजे, तो आप क्या कहेंगे, ये कलिमा को राजे। वो फिर एतराज करेगा कि कलिमा के साथ तो ताय मरबूता जुड़ी हुई है, ये तो मुअन्नस है, हिया जमीर राजे होनी चाहिए थी, आपने मुजक्कर जमीर कैसे राजे कर दी। तो आप क्या जवाब देंगे कि ये जमीर दायर है बैनल मर्ज वल खबर, और ऐसी जमीर में खबर की रियायत भी जायज और मर्ज की रियायत भी जायज है, हमने खबर की रियायत रख ली। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा वही अस्मुन कहें या वह अस्मुन कहें, दोनों सूरतें जायज हैं। और साहिबे काफिया ने मर्ज की रियायत रखी, चूंकि ये इब्तदाई तुलबा के लिए किताब है, ताकि उनके लिए खूब बात वाज हो जाए। भाई ऐ मुनकसिमतुन इलाहादिहिल अक्सामि सलासति व मुनहसिरतुन फीहा, यानी कलिमा तकसीम होता है इलाहादिहिल अक्सामि सलासति, इन तीन किस्मों की तरफ, व मुनहसिरतुन फीहा, और कलिमा बंद है इनके अंदर। लिअन्नहा, जी मैंने आपको बतलाया कि लिअन्नहा से दलील हसर जिक्र कर रहे हैं। हसर का क्या माना, बंद करना। एक चीज की किस्में बयान की जाएं और बतलाया जाए कि सिर्फ ये ही इसकी किस्में हैं, तो इसका मतलब है कि वहां हसर आ गया, बंद कर दिया कि इतनी ही किस्में हैं, ज्यादा नहीं। उसके लिए फिर दलील चाहिए होती है, जिसको दलील हसर कहते हैं। तो लिअन्नहा से दलील हसर जिक्र कर रहे हैं, दलील हसर जिक्र कर रहे हैं कि कलिमा की तीन ही किस्में क्यों हैं, इन्हीं तीन किस्मों में इसको क्यों बंद किया गया है, चार या पांच किस्में इसकी क्यों नहीं है। भाई दलील हसर ये दलील है, और दलील के लिए हमेशा दावा चाहिए होता है, दावा चाहिए होता है। तो सवाल पैदा होता है कि साहिब काफिया ने तो दावा जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि कलिमा क्या है, इस्मु व फिअलु व हर्फुन, फिर दावा नहीं जिक्र किया कि ये इन्हीं में बंद है, इन्हीं में, इन्हीं किस्मों में ये बंद है, और आगे दलील हसर जिक्र कर दी। कहते हैं चूंकि बात वाज़ह थी, बात वाजह थी जब साहिब काफिया ने कह दिया वही अस्मू व फेलू व हर्फुन कि कलीमा इसम फेल और हर्फ है, तो इससे खुद ही एक बात समझ में आ गई कि यही तीन किस्में हैं, इन्हीं के अंदर कलीमा बंद है और किस्में नहीं। तो यहां पर दावा खुद ब खुद आ गया कि कलीमा इन तीन किस्मों में बंद है। अब आगे दलील चाहिए थी तो उन्होंने दलील को जिक्र कर दिया। दावा चूंकि जिमनन समझ में आ रहा था, तवज्जो है, दलील के लिए पहले क्या चाहिए? दावा। एतराज होता है यहां तो कोई दावा नहीं है, दावा पहले जिक्र करते कि यही तीन किस्में और नहीं है, उसके बाद फिर दलील हसर जिक्र करते। तो मैं जवाब जिक्र कर रहा हूं कि चूंकि वही अस्मों व फ़ेलों व हर्फ़ुन, इससे खुद ही ज़िमनन एक बात समझ में आ गई थी कि यही तीन किस्में हैं, तीन किस्में जिक्र की, मालूम हुआ यही हैं और नहीं, कलीमा इन्हीं में बंद है। तो चूंकि दावा यहां जिमनन खुद बखुद इबारत से समझ में आ रहा था, इसलिए साहिब काफिया ने उसको लफ्जों में जिक्र नहीं किया और आगे फौरन उसकी दलील शुरू कर दी। भाई तो दावा यहां कैसे समझ में आया? जिमनन समझ में आ रहा था। उसी जिमनी दावे को जो समझ में आ रहा था उसी को साहिबे जामी अब जिक्र कर रहे हैं कि जो साहिबे काफिया ने कहा कि वही अस्मू व फ़ेलू व हर्फुन, इससे क्या बात समझ में आ गई? ऐ मुन कसिमतुन इलाहादिहिल अकसाम सलासती व मुन हसिरतुन फीहा, कि कलिमा तकसीम हो रहा है इन तीन किस्मों की तरफ, वह मुनहसिरतुन फीहा और इनमें बंद है। देखा, दावा इससे खुद ही समझ में आ रहा है, वो दावा यहां साहिब जामी ने लफ्जों में निकाल कर जिक्र कर दिया। तो यह मुनकसिमतुन इलाहादिहिल अकसाम सलासति व मुनहसिरतुन फीहा, यह साहिब जामी क्या बतला रहे हैं इस इबारत के जरिए? वो जो जिमनन दावा समझ में आ रहा था जिसको साहिब काफिया ने लफ्जों में जिक्र नहीं किया था, उसको निकाल कर बतला रहे हैं कि यहां दावा खुद ही समझ में आ गया कि ये तीन किस्में हैं, कलिमा इन तीन किस्मों की तरफ तकसीम हो रहा है, वह मुनहसिरतुन फीहा और इन्हीं के अंदर वो बंद है। तो ये दावा जिमनी जो समझ में आ रहा था उसको जिक्र कर दिया और आगे अब दलील हसर शुरू हो रही है। बात समझ में आ गई। और फिर लिअन्नहा, ये जार मजरूर है और जार मजरूर के लिए हमेशा मुतअल्लक चाहिए। तो ये जो जिमनन मुनहसिरतुन समझ में आ रहा था, वही मुनहसिरतुन फीहा, उसके साथ ये मुतअल्लक है और वो साहिब जामी ने इबारत में निकाल कर बतला दिया व मुनहसिरतुन फीहा लिअन्नहा। ये लिअन्नहा किससे मुतअल्लक है? मुनहसिरतुन से, भाई जो जिमनन यहां से समझ में आ रहा है। बाद शारहीन जो हैं वो फरमाते हैं कि ऐ मुन कसिमतुन, कि ये खबर है हिया की। बाद शारहीन की तकरीर बयान कर रहा हूं, वो क्या फरमाते हैं कि यह मुन कसिमतुन खबर है किसकी? हिया की खबर यह है। इस्मो व फ़ेलुन व हर्फुन, ये हिया की खबर नहीं है बल्कि हिया की खबर क्या है? मुन कसिमतुन। भाई क्यों? इस्मों व फ़ेलों व हर्फुन, ये खबर क्यों नहीं? तो उसकी वजह वो ये जिक्र करते हैं कि यहां पर हिया जमीर दायर हो गई बैनल मर्ज वल खबर, हिया जमीर दायर हो गई बैनल मर्ज वल खबर। और मैंने आपको बतलाया ऐसे मौका पर खबर की रियायत रखना भी जायज और मर्ज की रियायत रखना भी जायज, लेकिन याद रखो ऐसे मौके पर खबर की रियायत रखना औला है, बेहतर है। जायज दोनों हैं, चाहे आप मर्जा की रियायत रखें चाहे खबर की, लेकिन औला क्या है, किसकी रियायत रखी जाए? खबर की रियायत रखी जाए। लेकिन साहिब काफिया ने तो किसकी रियायत रखी? मर्जे की रियायत रखी, खबर की रियायत नहीं रखी। तो साहिब काफिया की इबारत गैर औला तरीके पर मुश्तमिल हुई। तो चुनांचे वो शारहीन पर जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, कि साहिब काफिया की जो इबारत है वो गैर औला तरीके पर नहीं मुश्तमिल। आप ये समझ रहे हैं कि इस्मों व फ़ेलों व हर्फुन ये हिया की खबर है? नहीं नहीं, ये खबर ही नहीं है। खबर क्या है? मुनकसिमतुन। खबर क्या है? मुनकसिमतुन है। अब देखो खबर की रियायत हो गई, खबर की रियायत हो गई, लेकिन ये जवाब अजीब जवाब है भाई। कम अज कम मेरा दिल तो इसको तस्लीम नहीं करता कि यूं कहा जाए कि यह मुनकसिमतुन हिया की खबर है, इसलिए क्योंकि खबर की रियायत रखना औला है, वाजिब नहीं। वाजिब होता फिर आप कहते कि यहां तो बड़ी खराबी लाजिम आ रही है, लिहाजा इस्म व फ़ेलुन व हर्फुन को खबर ना बनाओ, किसको खबर बनाओ? मुनकसिमतुन को। तो यहां तो ना इबारत में कोई ज़ौफ है ना उसमें कोई खराबी है, सिर्फ खिलाफ औला होने की वजह से अब आप क्या कह रहे हैं कि इसम फेल हर्फ को खबर बनाओ ही ना, बल्कि खबर किसको बनाओ, मुनकसिमत उनको। यह बात दुरुस्त नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। या तो इबारत में कोई फसाद होता फिर आप कहते कि मुनकसिमतुन इसकी खबर है, सिर्फ खिलाफे औला होने पर आप क्या कह रहे हैं कि इसकी खबर क्या है मुनकसिमतुन, ये दुरुस्त नहीं है भाई। बल्कि साहिब काफिया हिया लाए ही इसलिए हैं ये बतलाने के लिए कि ऐसे मौके पर हुआ लाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि हिया भी ला सकते हो, यानी मर्जे की रियायत भी रख सकते हो। तो फिर ये मुनकसिमतुन फिर किस लिए लाए, मैंने आपको बतला दिया आगे दलील हसर है और दलील के लिए क्या चाहिए, दावा चाहिए। तो ये वो दावा जो जिमनन जो मफहूम हो रहा था उसको साहिब जामी निकालकर बतला रहे हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, लिअन्नहा अयिल कलिमता, लिअन्नहा देखो लिअन्नहा अयिल कलिमता, मैंने इस कलिमा को मनसूब पढ़ा क्योंकि ये बदल है किस से, अन्ना की हा जमीर से। ऐसे माकबल वाला मुबदल मिनहू होता है और माबाद में बदल और दोनों का एराब एक होता है, और लिअन्नहा ये हा जमीर अन्ना का इसम है, मनसूब है महलन। तो इसी तरह अलकलिमा जो उसके से बदल आएगा वो भी क्या होगा, मनसूब होगा। लिअन्नहा अयिल कलिमता, देखा यह जमीर का मर्जा बतला दिया कि अन्नहा की हा जमीर किसको राजे है, कलिमा को राजे है। अयिल कलिमता लम्मा कानत मौजूअतन लिमानन वल वज़ु यस्तलज़िमु दलालता फहिया इम्मा मिन सिफतिहा अन तदुल्ला अला मानन काइनिन फी नफ्सिहा। भाई आगे दलील हसर जिक्र हो रही है और दलील हसर में दलालत जिक्र है, दलालत। दलील हसर क्या, अभी मैंने काफिया की सारी इबारत हल करवाई, क्या इबारत थी, लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा औ ला, या तो वो कलिमा जो है वो दलालत करेगा उस माना पर जो उसकी जात में होगा या दलालत नहीं करेगा। अगर दलालत न करे तो हर्फ है, और अगर दलालत करे तो फिर उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला होगा या नहीं मिला होगा। अगर जमाना नहीं मिला तो वो इसम है, और अगर जमाना मिला है तो वो फेल है। तो देखा वजह हसर के अंदर दलालत की बात चल रही है, तो इश्काल होता है, इश्काल कि पीछे तो दावे के अंदर कोई दलालत की बात नहीं हुई थी और आप वजह हसर में किसको ले आए। दावा तो सिर्फ यह था कि कलिमा की तीन किस्में हैं और कलिमा इन्हीं में बंद है, और आगे दलील हसर जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपने किसको जिक्र करना शुरू कर दिया, दलालत को, कि कलिमा या दलालत करेगा अपने माना पर या नहीं करेगा, तो आपने दलालत को जिक्र करना शुरू कर दिया। यह तो आपकी दलील दावे के मुताबिक नहीं, दावे में कोई दलालत का लफ्ज जिक्र नहीं। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई दावा कलिमा के बारे में है कि कलिमा बंद है तीन किस्मों में, और कलिमा किसको कहते हैं, जिसको वजा किया गया हो माना के लिए, और वजा को मुस्तलजिम है दलालत। वजा जहां होगी वहां क्या होगी, वहां दलालत जरूर होगी, तो वजा के साथ दलालत लाजिम है। तो जब ये कलिमा की वजह हसर जिक्र हो रही है, कलिमा के अंदर वजा का जिक्र आ गया और वजा के अंदर क्या आ गई, दलालत आ गई, तो दलालत पीछे लफ्जन तो जिक्र नहीं लेकिन जिमनन जिक्र है दावे के अंदर भाई, तो लिहाजा इसलिए अब दलालत की बात कर रहे हैं। देखिए यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं लम्मा कानत मौजूअतन लिमानन, कि कलिमा जब उसको वजा किया गया है एक माना के लिए, वल वज़ु यस्तलज़िमु दलालता, और ये वजा जो है ये तो मुस्तलजिम है दलालत को, उसमें दलालत जरूर होती है, उसके साथ दलालत लाजिम है। फहिया इम्मा मिन सिफतिहा अन तदुल्ला अला मानन का इन इन फी नफ्सिहा, इम्मा मिन सिफतिहा। ये मिन सिफतिहा की इबारत मुल्ला जामी रहमहुल्ला क्यों लाए, वजह यह कि यहां पर इश्काल होता है, इश्काल ये कि लिअन्नहा ये हा जमीर क्या है, अन्ना का इसम, इम्मा हर्फे तरदीद है, और अंतदुल्ला ये आगे तक ये सारी खबर है, अंतदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा औला, ये सारी क्या है, अन्ना की खबर, तो अन्ना का इसम क्या, हा जमीर जो किसको राजे कलिमा को, और अन्ना की खबर क्या है अंतदुल्ला तवज्जो है, और आप जानते हैं अन हरफे मस्तर है, हरूफ मस्तर तीन है मा अन और अन्ना, तो ये अन हरफे मस्तर है और ये जुमला फेलिया पर दाखिल होकर उसको मस्तर बना देता है। तो इस अन ने क्या किया अंतदुल्ला को किस माना में कर दिया मस्दर यानी दलालत के माना में कर दिया, और मस्दर जो है वो वसफ का नाम है, इसका खारिज में कोई अलग वजूद नहीं, तो मस्दर वसफ का नाम है। और तो लि अन्ना हा, अन्ना का जो इसम है वो हा जमीर यानी कलीमा है, तो अन्ना का इसम हुआ कलीमा जो कि जात है, और अन्ना की खबर जो है वो मस्दर हुआ। अन्ना की खबर का हमल किस पर होता है अन्ना के इसम पर, तो ये हमल सही नहीं। ये इसी तरह है जैसे आप कहते हैं जैदुन अदलुन, जैद जात का नाम है और अदल मस्दर है सिफत है वसफ है, और मस्दर का हमल जात पर सही नहीं है। तो यहां पर भी अन्ना का इसम क्या हा जमीर जो किसको राजे कलिमा को, गोया कलिमा अन्ना का इसम, अन्ना का इसम क्या है कलिमा, और उसकी खबर क्या है अंतदुल्ला यानी दलालत जो मस्दर है, और मस्दर का हमल तो जात पर सही नहीं। इश्काल समझ में आया। तो साहिब जामी ने मिन सिफतिहा इबारत यहां निकालकर बतला दिया कि अन्ना की खबर अंतदुल्ला नहीं है, बल्कि अन्ना की खबर जुमला खबरिया है। क्या है देखो तरकीब समझ लो, इम्मा मिन सिफतिहा यह है खबर मुकद्दम, और अंतदुल्ला, अंतदुल्ला किस माना में दलालत के माना में, तो यह मुब्तदा मुअख्खर है। अन ने क्या किया तदुल्ला अला मानन फी नफसिहा औला, इसको किसमें बदल दिया इसको दलालत के माना में कर दिया, इसको बना लेंगे मुब्तदा मुअख्खर, और मिन सिफतिहा यह जार मजरूर क्या बनेगा इसके लिए खबर मुकद्दम। याद रखो ये जो जार मजरूर होता है ये कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, ये जब भी बनेगा क्या बनेगा खबर बनेगा। तो मीन सिफतिहा ये है खबर मुकद्दम, और अंतदुल्ला ये दलालत के माना में होकर ये मुब्तदा मुअख्खर है, और फिर ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर ये पूरा जुमला इस्मिया ये खबर है अन्ना की। तो लि अन्ना की खबर मस्दर नहीं है बल्कि पूरा जुमला खबरिया बनेगा, और अब वो जो खराबी थी कि मस्दर का हमल तो जात पर सही नहीं है वो खराबी खत्म हो गई, क्योंकि अब जो खबर है वो मस्दर नहीं है बल्कि खबर क्या है पूरा जुमला इस्मिया है। बात समझ में आ गई। तो मीन सिफतिहा इसको खबर मुकद्दम बनाएंगे, किस तरह मीन जारा सिफतिहा सिफती मजरूर लफजान मुजाफ हा जमीर मजरूर महल्लान मुजाफिले मुजाफिले, और ये जमीर किसको राजे ये कलीमा को, या तो कलीमा की सिफत में से ये होगा क्या कि अंतदुल्ला अला मानन क्या कि वो दलालत करेगा अपने माना पर। तो मीन सिफतिहा ये जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए साबितुन से, साबितुन सीगा इसमें फाय, इसके अंदर हुआ जमीर फाय जो किसको राजे किसको खबर है, खबर है खबर को किससे जोड़ते हैं मुब्तदा से, मुब्तदा क्या है अंतदुल्ला है, तो वो किसके माना में दलालत के माना में, तो साबितुन में हुआ जमीर जो किसको राजे उस दलालत को राजे जो मुब्तदा है। बात समझ में आ गई। तो मीन सिफतिहा ये मुतालिक होगा साबितुन से मुतालिक होकर, ये खबर मुकद्दम और अंतदुल्ला ये मुब्तदा मुअख्खर है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये खबर किसके लिए अन्ना के लिए खबर बन जाएगा। सूरत समझ में आ गए। फहिया तो ये जो कलीमा है इम्मा मिन सिफतिहा या तो इसकी सिफत में से होगा कि अंतदुल्ला अला मानन का इन इन फी नफसिहा ये दलालत करेगा ऐसे माना पर का इन इन फी नफसिहा, ये काइनिन यहां पर साहिब जामी ने ये निकालकर वो दरअसल ये बतलाना चाहते हैं कि ये फी नफसिहा सिफत है माना की। फी नफसिहा को अंतदुल्ला से न जोड़ना भाई, आपने पढ़ा है जार मजरूर जब आठ चीजों के बाद आए तो ये उनमें से किसी एक से मुताल्लिक होगा और उनमें से एक फेल भी है, तो फी नफसीहा जार मजरूर है और माकबल में अंतदुल्ला फेल है, तो यह आप ये ना समझें कि यह फी नफसीहा किससे जुड़ेगा, अंतदुल्ला से, बल्कि यह सिफत है किसकी, माना की। मैंने आपको बतलाया था नकिरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो वह अमूमन उसकी सिफत बनता है। यहां पर भी देखो मानन ये नकिरा है और इसके बाद फी नफसीहा जार मजरूर आया तो यह इसके लिए क्या बनेगा, सिफत। और सिफत बराह रास्त नहीं बनेगा, इसके लिए मुतअल्लक पहले निकालना पड़ेगा। अला मानन काइनिन फी नफसीहा, काइनिन मजरूर निकाला क्योंकि मानन मौसूफ मजरूर है, उस पर अला जारा दाखिल है तो काइनिन ये भी क्या होगा, मजरूर होगा। इन्होंने काइनिन निकाला, आप चाहें तो साबितिन निकाल लें। मैंने आपको बतलाया था अफाल आम्मा चार हैं, कौन, सुबूत, वजूद और हुसूल, तो चाहे कौन से काइनुन निकाल लें, चाहे सुबूत से साबितुन निकाल लें, चाहे हुसूल से हासिलुन निकाल लें और चाहे वजूद से मौजूदुन निकाल लें। तो इन्होंने काइनुन जिक्र किया है कि अंतदुल्ला अला मानन इम्मा मिन सिफतिहा, या तो उस कलीमा की सिफत यह होगी अंतदुल्ला अला मानन कि वो दलालत करेगा ऐसे माना पर, देखो मौसूस सिफत वाला तर्जमा करेंगे, वो दलालत करेगा ऐसे माना पर साबितिन फी नफसीहा ऐफी नफसिल कलिमती, देखो जमीर का मर्जा बतला दिया, ऐफी नफसिल कलिमती बतला दिया कि नफसीहा की जमीर किसको राजे, अल कलिमा, कि वो दलालत करे ऐसे माना पर फी नफसिल कलिमती जो किसके अंदर हो, नफसे कलिमा में, यानी वो माना नफ्स कलिमा में हो, कलिमा की जात में हो। इबारत फिर समझो, लिअन्नहा इम्मा अंतदुल्ला अला मानन फी नफसीहा, इसलिए क्योंकि कलिमा या तो वो दलालत करेगा ऐसे माना पर फी नफसीहा जो किस में होगा, कलिमा के नफ्स में, उसकी जात में होगा, औला, या ऐसे माना पर वो दलालत नहीं करेगा जो उस कलिमा की जात में होगा। तवज्जो है, फिर समझो, फिर सुनो, वजह हसर है भाई, ये मुश्किल मकाम है, अच्छी तरह समझ लें। इसलिए ले अन्नहा इम्मा अंतदुल्ला अला मानन फी नफसिहा औला, कि कलिमा या तो वो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उस कलिमा की जात में होगा, और या वो ऐसे माना पर दलालत नहीं करेगा जो कलिमा की जात में हो। अब ये कलीमा की जात में वो माना हो, इसका क्या मतलब है, फिर सुनो, कलीमा जो है या तो वो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उसकी अपनी जात में होगा या उस पर दलालत नहीं करेगा। तो माना का कलीमा की जात में होने का क्या मतलब है, तो आपको बतलाएंगे कि माना का कलीमा की जात में होने का मतलब यह है कि कलीमा खुद उस पर दलालत करता है, यानी किसी और लफ्ज को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। कलिमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो किस में होगा, कलिमा की जात में ही होगा। भाई कलिमा की जात में माना होने का क्या मतलब है, इसका क्या माना, मतलब यह है, इससे मुराद यह है कि कलिमा खुद उस पर दलालत करता है, कोई और कलिमा साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा इब्तिदा, आपको माना समझ में आया, शुरू करना, देखो यह आपको इब्तिदा से समझ में आ गया तो हम कहेंगे ये जो शुरू करने का माना है ये इब्तिदा कलीमा जो है इसकी जात में है, इसकी जात में ये माना है। क्या माना, इसकी जात में ये माना है, यानी ये खुद उस पर दलालत करता है, ये किसी और से जुड़ने का मोहताज नहीं। जब खुद उस पर दलालत कर रहा है तो गोया ये माना इसकी जात में ही है। बात समझ में आ गई, देखिए भाई खुद बतला रहे हैं, कहते हैं वल मुराद बिकौन इल माना फी नफसीहा, तर्जमा सुनो, और माना का नफ्से कलीमा में होने से मुराद कौन, मस्तर है ना, माना का कलीमे की जात में होने से मुराद क्या है, अब वो बयान करने लगे, वल मुरादु बिकौनिल माना फी नफसीहा, और माना का कलीमे की जात में होने से मुराद ये है कि अंतदुल्ला अलैहि बिनफसीहा, कि कलीमा उस पर खुद दलालत करे, कलीमा उस पर, जानी जैदुन बी नफसी ही, क्या तर्जमा, जहां जैद खुद आया, जानी जैदुन बी नफसी ही, मेरे पास जैद खुद आया, तो यहां पर भी कि अंत इससे मुराद यह है अंत दुल्ला अलैही भी नफसिहा कि कलीमा दलालत करे उस माना पर खुद मिन गैर हाजतिन इलन जिमामी कलीमतिन उखरा इलैहा बगैर इस हाजत के कि उसके साथ कोई और कलीमा मिल जाए। माना का कलीमे की जात में होने का मतलब यह है कि कलीमा खुद उस पर दलालत करे बगैर इस हाजत के और जरूरत के कि इसके साथ कोई और कलीमा मिले, किसी और कलीमे के साथ मिलने का वो मोहताज न हो। जैसे मैंने इब्तिदा कहा तो आपको उसका माना शुरू करना समझ में आ गया, तो हम कहेंगे ये जो शुरू करने वाला माना है ये कलीमा इब्तिदा की जात में ही मौजूद है, ये खुद ही क्या करता है उस पर दलालत करता है, किसी और कलीमे को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तवज्जो से इधर देखिए, माना का कलीमे की जात में होने का क्या मतलब है कि कलीमा खुद उस पर दलालत करता है और वो मोहताज नहीं है कि उसके साथ कोई और कलीमा आकर मिले। क्यों? लिस्तिकलालिही बिल मफहूमियती, लिस्तिकलालिही कि हाजमी राजे है माना को, लिस्तिकलालिल माना इसलिए क्योंकि वो माना मुस्तकिल होता है बिल मफहूमियती मफहूम होने के एतबार से, वो माना क्या होता है मुस्तकिल होता है मफहूम होने के एतबार से, यानी वो माना मुस्तकिलन उससे समझ में आ रहा होता है। इब्तिदा से शुरू करने का माना मुस्तकिलन समझ में आ रहा है, किसी और कलिमे को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो ये जो लफ्ज इब्तिदा है इसका क्या माना? शुरू करना, शुरू करना। तो इब्तिदा का माना है शुरू करना, तो ये जो शुरू करने का माना इब्तिदा से समझ में आ रहा है ये मुस्तकिलन इससे समझ में आ रहा है, किसी और कलिमे को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मुस्तकिल बिल मफहूम है। किससे? ये जो शुरू करने का माना है ये मुस्तकिल बिल मफहूम है, यानी मुस्तकिलन समझ में आ रहा है। किससे? लफ्ज इब्तिदा से, किसी और कलिमे को साथ जोड़ने की हाजत नहीं। लिस्तिकलालिही बिल मफहूमियति बवजह इसके मुस्तकिल बिल मफहूम होने के, बिल मफहूमियति इसके अंदर ये जो याए मुशद्दद और गोल ता है ये मसदरियत के लिए है। आपने पढ़ा था कि ये ता कई मानी के लिए आती है, उनमें से एक माना क्या था? मसदरियत, कि सिफत को अगर आपने मस्दर बनाना हो तो उसके साथ याए मुशद्दद और गोल ताज मिला देते हैं, जैसे फाइल, और इसे आप मस्दर बनाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? फाइलियत। तर्जमा अब मस्दर वाला करना, फाइल होना। जारिब पिटाई करने वाला, लेकिन आप इसे मस्दर बनाना चाहते हैं तो जारिबियत। अब मस्दर वाला तर्जमा करो, क्या तर्जमा? जारिब होना। मजरूब वो जिसकी पिटाई की गई है लेकिन आप इसे मस्तर बनाना चाहते हैं तो मजरूबियत, या मुशद्दद और गोलता जोड़ते जाएंगे तो मजरूबियत, क्या तर्जमा? मजरूब होना। तो यहां भी मफहूमियत, क्या माना? मफहूम होना, यानी वो माना मुस्तकिल है मफहूम होने में, उस लफ्ज से खुद ब खुद वो माना समझ में आता है, किसी और लफ्ज को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? हासिल कलाम क्या हुआ? वजह हसर जिक्र कर रहे हैं कि कलीमा की यही तीन किस्में हैं, क्योंकि कलीमा या तो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उस कलीमा की जात में होगा, और कलीमा की जात में माना होने का क्या मतलब है कि वो कलीमा से खुद ब खुद समझ में आ रहा है और वो कलीमा मोहताज नहीं है कि उसके साथ किसी और लफ्ज़ को भी जोड़ा जाए, क्योंकि वो माना मुस्तकिल बिल मफहूम है, यानी मुस्तकिलन उस लफ्ज़ से समझ में आ रहा है। औ मिन सिफतिहा अन ला तदुल्ला अला मानन फी नफसिहा, औ मिन सिफतिहा अन ला तदुल्ला, भाई काफिया की इबारत क्या है? अंतदुल्ला अला मानन फी नफसिहा औला, या तो वह दलालत करेगा उस माना पर या नहीं करेगा। तो साहिबे जामी पूरी इबारत यहां भी उसी तरह निकालकर बतला रहे हैं, औ मिन सिफतिहा अन ला तदुल्ला अला मानन फी नफसिहा। पूरी इबारत क्यों है? साहिबे काफिया ने तो मुख्तसरन कहा औला, या नहीं, लेकिन पूरी इबारत कैसी है, औ मिन सिफतिहा अल्ला तदुल्ला अला मानन फी नफसिहा। यहां पर भी मिन सिफतिहा निकाल लिया, मालूम हुआ यहां पर भी मिन सिफतिहा को खबर मुकदम बनाएंगे और अल्ला तदुल्ला अला मानन फी नफसिहा ये मुब्तदा मुअख्खर है और मुब्तदा खबर मिलकर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये मातूफ हुआ किस पर, अंतदुल्ला जो पीछे आया था, इम्मा अंतदुल्ला और लातदुल्ला, तो ये उसी पर क्या हो जाएगा, आतफ हो जाएगा। और मिन सिफतिहा या कलिमा की सिफत ये होगी कि लातदुल्ला अला मानन फी नफसिहा कि वो दलालत नहीं करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में हो, बल अला मानन बल्कि वो दलालत करेगा ऐसे माना पर, यहताज फी दलालति अलैही, ये मानन नकेरा है, इसके बाद यहताजु फेल आया तो ये इसकी सिफत बनेगा। इधर देखिए, कलिमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो उसकी जात में होगा या ऐसे माना पर दलालत नहीं करेगा, जब ऐसे माना पर दलालत नहीं करेगा फिर किस पे दलालत करेगा, तो बतलाने लगे बल्कि फिर वो ऐसे माना पर दलालत करेगा कि वो उस माना पर दलालत करने में मोहताज होगा दूसरे कलिमों का, वो मोहताज होगा। तो कहते हैं वो या तो दलालत नहीं करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में हो, बल अला मानन बल्कि दलालत करेगा ऐसे माना पर, ये यहताजु को सिफत बनाना है माना की, बल्कि वो दलालत करेगा ऐसे माना पर कि वो माना मोहताज है, फिर दलालती अलैही अपने ऊपर दलालत होने में, अपने ऊपर दलालत होने में वो मोहताज है, इलन जिमामी कलिमतिन उखरा इलैहा, इस बात का कि मिले कोई और कलिमा उस कलिमा के साथ, कि कोई और कलिमा उसके साथ मिले। देखो ये समझ लें इबारत जरा यहां मुश्किल है, इब्तिदा का क्या माना, शुरू करना, और ये माना इब्तिदा की जात में ही मौजूद है, यानी ये इब्तिदा खुद ही उस पर दलालत करता है, किसी और कलिमे के साथ जुड़ने का मोहताज नहीं। तो ये गोया ये जो शुरू करने का माना है ये किससे समझ में आया, इब्तिदा से, ये माना मुस्तकिल बिल मफहूम है, किससे, लफ्ज इब्तिदा से, लफ्ज इब्तिदा से ये माना मुस्तकिलन हमें समझ में आ रहा है, किसी और कलिमे को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह लफ्ज मीन है, मीन भी अरबी जुबान में इब्तिदा के लिए आता है, मीन भी, तो अब देखो कलिमा क्या है, मीन, माना क्या है, शुरू करना, तवज्जो से इधर देखो, कलिमा है मीन और माना क्या है, शुरू करना, ये लेकिन ये शुरू करने का माना ये मोहताज है, ये किस चीज में, कि ये मीन इस पर दलालत करे, मीन ने इस पर दलालत करनी है ना, लेकिन सिर्फ मीन कहो तो दलालत हुई नहीं, तो ये शुरू करने का माना ये मोहताज है किस चीज में, कि मीन इस पर दलालत करे, ये मोहताज है कि मीन इस पर दलालत करे, किस चीज का मोहताज है, कि इसके मीन के साथ कोई और कलीमा आकर मिल जाए ताकि ये मेरे ऊपर क्या कर ले, दलालत कर ले। बात समझ में आ गई, फिर देखो कलीमा क्या, मीन, माना क्या, शुरू करना, ये तो ये शुरू करने का माना मीन से समझ में नहीं आता, तो यहां मीन की जात में ये माना नहीं है, मीन की जात में नहीं है, यानी मीन खुद इस पर दलालत नहीं कर रहा, यह शुरू करने वाला जो माना है यह मोहताज है कि ये मीन मेरे ऊपर दलालत करे, किस चीज का मोहताज है, दूसरे कलिम, ये जो शुरू करने का माना है ये मोहताज है कि मीन इस पर दलालत करे, किस तरह से, मीन शुरू करने पे दलालत कर रहा है, मीन शुरू करने पर दलालत खुद ब खुद नहीं कर रहा, और लेकिन ये शुरू करने वाला माना है ये मोहताज है, ये चाहता है कि मीन क्या कर ले, मेरे ऊपर दलालत कर ले, तो दलालत के लिए मोहताज हुआ ये माना, ये माना मोहताज है, किस चीज का मोहताज है, कि मीन के साथ कोई और कलिमे मिल जाएं ताकि ये मेरे ऊपर क्या कर दे, दलालत कर दे और मैं इसे मफहूम हो जाऊं। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं बल अला मानन बल्कि वो कलिमा दलालत करता है ऐसे माना पर, यहताज के वो माना जो है मोहताज होता है, फिर दलालत अलैही, मोहताज होता है किस चीज में? अपने ऊपर दलालत होने में। शुरू करना मोहताज है कि मेरे ऊपर दलालत हो जाए, किसकी? मीन की। तो ये अपने ऊपर दलालत में मोहताज है मीन का कि इसके साथ कोई और? कलीमा क्या? मीन। माना क्या? शुरू करना। लेकिन क्या मीन अकेला कहो तो शुरू करना समझ में आया? तो ये मीन का माना तो है शुरू करना, ये शुरू करना इस मफहूम होना चाहिए, इस मीन से समझ में आना चाहिए। लेकिन ये माना मोहताज है कि कब इसे मफहूम होगा? जब इसके साथ दूसरे कलिमे को जोड़ेंगे, फिर ये इस पर दलालत हो जाएगी। बात समझ? बल अला माना यहताज फी दलालत अलैही, अलैही की हाजमीर भी माना को राजे है कि ऐसा माना कि वो माना मोहताज है अपने ऊपर दलालत होने में कि ये मेरे ऊपर दलालत कर ले। इला इलन जिमामी कलिमतिन उखरा इलैहा, इस बात का मोहताज है कि मिल जाए कोई दूसरा कलिमा इलैहा इस कलिमा मिन के साथ, कोई दूसरा कलिमा इस कलिमे के साथ मिल जाए, जो भी हर्फ हो मिन की। तो मैं मिसाल मिन बतौर मिसाल के मैं जिक्र कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? हासिल कलाम इधर देखिए, कलिमा या तो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में होगा या नहीं करेगा। जात में माना होने का क्या माना? कि वो कलिमा खुद ब खुद उस माना पर दलालत करेगा, यानी माना खुद ब खुद उससे समझ में आएगा। वो माना मोहताज नहीं है कि इसके साथ कोई और कलिमा जोड़ो फिर मैं इससे समझ में आऊंगा, नहीं नहीं। वो जैसे ही इब्तिदा मैंने कहा आपको शुरू करना समझ में आ गया। या वो दलालत नहीं करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में होगा, बल्कि ऐसे माना पर दलालत करेगा कि वो माना मोहताज है कि इस पर दलालत हो जाए इस हर्फ के जरिए। तो ये मोहताज है किस चीज का? कि इस कलिमा के साथ कोई और कलिमा साथ मिलाया जाए ताकि ये मेरे ऊपर दलालत कर दे। लिआदम इस्तिकलाल ही बिल मफहूमियती, बवजह इसके मुस्तकिल बिल मफहूम न होने के, कि माना उससे मुस्तकिल बिल मफहूम नहीं, मुस्तकिलन मीन से शुरू करना समझ में नहीं आ रहा। وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي بَيَانِ حَدِّ الْإِسْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, اور عن قریب اس بات کی تحقیق آ جائے گی فی بیان حد الاسم, اسم کی تعریف کے بیان میں ان شاء اللہ تعالی, بھئی اس کی تحقیق آ جائے گی۔ کس کی تحقیق آ جائے گی؟ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تحقیق کہتے ہیں آگے ہم اسم کی تعریف کریں گے तो वहां पर ये इसकी तफसील आ जाएगी। तो कहते हैं वसयजी उ तहकीक जालिका, और इसकी अनकरीब तहकीक आ जाएगी। किसकी तहकीक? माना के मुस्तकिल बिल मफहूम होने की तहकीक आ जाएगी। फी बयान हद इस्मी, इसम की तारीफ के बयान में इंशा अल्लाह ताला। अल किस्मुस्सानी, इधर देखिए, फिर आप पहले इबारत समझ लें। इधर देखिए इन्होंने क्या कहा, वजह हसर जिक्र कर रहे हैं कि कलीमा या तो वो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में होगा, औला या दलालत नहीं करेगा। तो गोया दो किस्में हो गई। पहली किस्म क्या? कलीमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो उसकी जात में होगा। दूसरी किस्म, दलालत नहीं करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में होगा। ये जो दूसरा है ये है हर्फ। कलिमा जब ऐसे माना पर दलालत न करे जो उसकी जात में हो तो इसको क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। तो वही बयान कर रहे हैं। अल किस्मुस्सानी अल हर्फु, मतन जरा देखो, अल किस्मुस्सानी अल हर्फु, दूसरी किस्म क्या है? हर्फ है। दूसरी किस्म कौन सी? जो वो कलिमा जो अपने माना पर खुद दलालत न करे वो हर्फ है। अल किस्मुस्सानी, अल किस्मुस्सानी, साहिब जामी ने अस्सानी से पहले अल किस्म का लफ्ज निकाला। बतलाना यह चाहते हैं कि अस्सानी अल किस्म की सिफत है। अल किस्मुस्सानी, तो यह सानी किसकी सिफत है? अल किस्म की। मौसूफ महजूफ जो है अल किस्म है। दरअसल यहां शुबा पैदा होता था कि भाई साहिब काफिया को असानियतु कहना चाहिए था, क्योंकि बात किसकी चल रही है, कलीमा की, और कलीमा मुअन्नस है और मुअन्नस की सिफत भी मुअन्नस असानिया आनी चाहिए। तो जवाब दे दिया साहिब जामी ने कि यह असानी कलीमा की सिफत नहीं है बल्कि अलकिस्म उस्सानी, जो दो किस्में बयान हो गई कलीमा की तो यह दूसरी किस्म की बात हो रही है। तो असानी किसकी सिफत है, किस्म की। तो कहते हैं अलकिस्म उस्सानी, और दूसरी किस्म जो है वह हुआ माला यदुल्लु अला मानन फी नफसिहा, और ये वो कलीमा जो दलालत ना करे ऐसे माना पर जो उसकी जात में हो। अल हर्फ, वो क्या है, हर्फ है, का मिन व इला, जैसे कि मिन और इला हैं, फइन नहुमा यहताजानी, क्योंकि मिन और इला ये दोनों मोहताज हैं, फिर दलालती अला माना यही हिमा, अपने माना पर दलालत करने में, मिन और इला अपने माना पर दलालत करने में मोहताज हैं। इनका माना क्या है बतला रहे हैं, आनी इब्तिदा अवल इंतिहा, यानी इब्तिदा और इंतिहा। मीन का क्या माना, इब्तिदा, और इला का क्या माना, इंतिहा। तो ये दोनों अपने माना यानी इब्तिदा और इंतिहा पर दलालत करने में मोहताज हैं। इला कलिमतिन उखरा, एक दूसरे कलिमे के, कल बसरती वल कूफती, जैसे कि बसरा और कूफा हैं, फी कौली का आपके इस कौल के अंदर, सिर तो मिनल बसरती इलल कूफा, मैं चला बसरा से लेकर कूफा तक, सारा यसीर उसेरन, मैंने बतलाया इसका माना है चलना, मैं चला बसरा से कूफा तक, तो मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हुई, बसरा से, ये किसने बताया, मीन ने, और मेरे चलने की इंतहा कहां पर हुई, कूफा पर, ये किसने बताया, इला ने। तो मीन और इला, मीन आता है इब्तिदा के लिए, इला आता है इंतहा के लिए, लेकिन ये अपने माना पर दलालत नहीं करते जब तक इनके साथ और कलिमे न जोड़े जाएं। यहां इनके साथ देखो और कलिमे जुड़ गए, तो मीन ने अपने इब्तिदा वाले माना पर और इला ने अपने इंतहा वाले माना पर दलालत कर दी। यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब आगे वजह तस्मिया जिक्र कर रहे हैं कि हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं। भाई इधर देखिए, हर्फ का माना होता है तरफ, जानिब। तो हर्फ भी चूंकि कलाम में एक जानिब में वाके होता है इसलिए इसको हर्फ कहते हैं। हर्फ भी क्या होता है, कलाम में एक जानिब में, एक तरफ या एक किनारे पे वाके होता है इसलिए इसको हर्फ कहते हैं। आप कहेंगे भाई हर्फ तो कभी दरमियान में भी आ जाता है, जैदुन फिद्दारी, ये फी देखो हर्फ है और दरमियान में आ गया जैद और दार के। तो जवाब याद रखना भाई, किनारे पर होने का ये माना नहीं है कि जगह के एतबार से किनारे पर हो, बल्कि किनारे का मतलब ये है कि यानी कलाम का अहम जुज ये नहीं बनता। कलाम के अहम जुज दो हैं, एक मुस्नद और एक मुस्नद इलैह। तो इसम और फेल ये जो है मुस्नद और मुस्नद इलैह बनते हैं। हर्फ ना मुस्नद बनता है और ना मुस्नद इलैह, तो ये एक किनारे पर है, एक जानिब है, ना ये मुस्नद है और ना ये मुस्नद इलैह है। कहते हैं वह इन्नमा सुम्मिया हाजल किस्म हर्फन, इस किस्म को हर्फ कहते हैं, लिअन्नल हर्फ फिल लुगति तरफ, इसलिए क्योंकि हर्फ जो है अरबी जुबान में तरफ को कहते हैं यानी जानिब को। वह हुआ फी तरफिन, और हर्फ भी क्या होता है, एक तरफ में होता है, ऐ जानिबिन मुकाबिलिन लिल इस्मि वल फिअलि, यानी एक जानिब में होता है इसम और फेल के मुकाबले में, इसम और फेल के मुकाबले में जानिब में होता है। तो कहते हैं वह हुआ फी तरफिन, और हर्फ भी एक तरफ में होता है, ऐ जानिबिन मुकाबिलिन लिल इस्मि वल फिअलि, यानी ये ऐसी जानिब जो इसम और फेल के मुकाबिल होती है, है सुयकानी उम्दतन फिल कलामी, इस तौर पर के जो इसम और फेल हैं ये कलाम में उम्दा वाके होते हैं, वह हुआ ला यकौ उम्दतन फी ही, और ये जो हर्फ है ये कलाम में उम्दा वाके नहीं होता, कमा सतारिफू, जैसे कि अन करीब आप जान लेंगे। अनकरीब आप जान लेंगे कि इसम और फेल कलाम में उमदा वाके होते हैं, हर्फ उमदा वाके नहीं होता। इसको अच्छी तरह समझ लें भाई, उमदा किसे कहते हैं कलाम के अंदर। उमूमन शुरुआत उठाएंगे तो वो उमूमन यही लिखते हैं कि उमदा जो कलाम में आला है यानी मुस्नद इले, एक मुस्नद होता है और एक मुस्नद इले। मुस्नद इले वो है जिसके बारे में बात की जाए, और मुस्नद जो बात की जाए तो मुस्नद इले कलाम में कहते हैं आला है, इसलिए इसको उमदा कहते हैं। लेकिन ये दुरुस्त नहीं भाई, समझ लें उमदा किसे कहते हैं। याद रखो यहां दो लफ्ज हैं, एक है उमदा उमदतुन और एक है फजलतुन। उमदा और फजला ये एक दूसरे के मुकाबिल हैं। उमदा का माना है कलाम का आला हिस्सा, और फजला का माना है जायद, यानी ये कलाम का जायद हिस्सा है। अगर ये न भी हो तो भी कलाम दुरुस्त है। तो उमदा किसे कहते हैं, उमदा कलाम का बुनियादी आला हिस्सा जो है, यूं कहें कलाम का बुनियादी जुज जो है उसको उमदा कहते हैं। और कलाम के बुनियादी जुज दो हैं, एक मुस्नद एक मुस्नदिल। तो मुस्नद भी उमदा है और मुस्नदिल भी उमदा है। जैसे मुब्तदा और खबर, मुब्तदा क्या है मुस्नदिल और खबर क्या है मुस्नद, तो ये दोनों उमदा हैं। इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर फेल और फाइल, फेल क्या है मुस्नद और फाइल क्या है मुस्नद इले, तो ये दोनों उमदा हैं। इसी तरह इन्ना का इसम और खबर, इन्ना किस पर दाखिल होता है मुब्तदा और खबर पर, तो इन्ना का इसम मुब्तदा के दर्जे में है और उसकी खबर मुब्तदा की खबर के दर्जे में है। तो इन्ना जैदन कायमुन, तो इन्ना का इसम क्या जैदन, ये मुस्नद इले है और कायमुन इसकी खबर है इन्ना की, तो ये भी क्या है कलाम में उमदा है। या इसी तरह काना का इसम और खबर, काना का तो काना का इसम क्या होता है मुस्नद इले, और काना की खबर क्या होती है मुस्नद होती है। तो उमदा किसे कहते हैं, कलाम का उमदा और आला और बुनियादी जुज जो है उसको उमदा कहते हैं, और वो दो हैं मुस्नद भी और मुस्नद इले भी। यानी ये कलाम के वो जुज हैं कि जिनके बगैर कलाम पूरा नहीं होता, और इनमें से किसी को हजफ करना जायज नहीं इल्ला ये कि कोई दलील उसके कायम मकाम हो जाए। अगर आप उमदा को हजफ करेंगे तो कलाम फासिद हो जाएगा, कलाम में खलल आ जाएगा, उसका पूरा माना ही समझ में नहीं आएगा। जैदुन कायमुन, जैदुन है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर, तो जैद को हजफ कर दें, सिर्फ कायमुन कहें बात किसी को समझ में नहीं आएगी, या सिर्फ जैद कहें कायमुन को हजफ कर दें तो बात किसी को समझ में नहीं आएगी। तो उमदा कलाम का वो आला और बुनियादी जुज कि उसको हजफ कर दें तो कलाम में खलल आ जाए, कलाम फासिद हो जाए, और उसको अगर हजफ करना भी पड़े तो वहां कोई दलील कायम करना पड़ेगी, कोई करीना ऐसा होना चाहिए जिससे सुनने वाले को पता चल जाए कि यहां पर यह मुब्तदा महजूफ है या खबर महजूफ है। तो उमदा क्या है कलाम में मुस्नद और मुस्नद इले। जुमला इस्मिया में मुस्नद इले को क्या कहते हैं मुब्तदा, और मुस्नद को क्या कहते हैं खबर, ये दोनों उमदा हैं। इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर फेल है मुस्नद और फाइल है मुस्नद इले, ये दोनों भी क्या हैं उमदा हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह मैंने इन्ना और काना वगैरह की मिसाल दी, मतलब जो भी मुस्नद और मुस्नद इले के दर्जे में है वो सब क्या है उमदा है कलाम के अंदर। जबकि इनके अलावा जो है उनको फजला कहते हैं, फजला का माना जायद चीज, जैसे मफाइल खमसा है मफूल बिही है मफूल फी है मफूल लहू है मफूल माहू है और मफूल मुतलक है, ये सारे क्या हैं ये जायद हैं। इसी तरह हाल है तमीज है वगैरह और जितनी चीजें आ गई वो सब क्या हैं फजला हैं जायद हैं, यानी इनको हजफ कर दें तो कलाम में कोई खलल और खराबी नहीं आती। जैसे देखो जराबा जैदुन आमरान, जराबा जैदुन आमरान, जैद ने अमर की पिटाई की, जराबा फेल ये मुस्नद है और जैदुन मुस्नद इले फाइल है, और ये आमरान ये जो मफूल बिही आया ये जायद है, इसको आप हजफ भी कर दें कलाम फिर भी पूरा है। जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, कलाम में कोई खराबी आई, कोई खराबी नहीं आई, सिर्फ मफूल का पता नहीं चला आपको, कोई हरज नहीं। जराबा जैदुन से इतना तो पता चल गया कि पिटाई हुई है, जैद ने पिटाई की है, कोई ना कोई मजरूब है, लेकिन वो कौन है मैं आपको नहीं बताना चाहता, मैंने उसको हजफ कर दिया। तो मुस्नद और मुस्नद इलैह के अलावा कलाम के बाकी अज्जा क्या कहलाते हैं? फजला। और इनको फजला इसलिए कहते हैं कि इनके बगैर भी बात पूरी हो जाती है। लेकिन एक गहरी बात याद रखना, कभी कभार फजला भी जरूरी हो जाता है। फजला का यह माना नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है भाई, नहीं नहीं बिल्कुल बेकार नहीं, मतलब यह था कि उसको हजफ भी कर दें तो कलाम फिर भी ठीक रहता है। लेकिन बाज औकात फजला भी जरूरी हो जाता है, उसका जिक्र करेंगे तो बात ठीक होगी, उसको जिक्र नहीं करेंगे तो बात ठीक नहीं होगी। मवाके मुख्तलिफ हैं, कहीं फजला जायद होता है और कभी कभार फजला जरूरी भी बन जाता है, उसको अगर हजफ करेंगे तो कलाम का माना ही खराब हो जाएगा। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्ज मरहा, और तुम न चलो जमीन पर अकड़कर। तो वला तमशी फिल अर्ज, अब ये मरहन क्या है? ये हाल है और ये फजला है, फजला है, लेकिन इसको हजफ करेंगे तो कलाम का माना खराब हो जाएगा। अल्लाह ताला मना किससे फरमा रहे हैं कि जमीन पर अकड़ कर ना चलो, और अगर मरहन को हजफ कर दें तो माना क्या बनेगा? जमीन पर ना चलो। तो क्या जमीन पर चलने से अल्लाह ताला रोक रहे हैं या तकब्बुर से रोक रहे हैं? तकब्बुर से रोक रहे हैं। तो मरहन को हजफ करेंगे तो माना ही खराब हो जाएगा कलाम का। बात समझ में आ गई? तो फजला भी कभी जरूरी हो जाता है कलाम के अंदर, यानी उसका जिक्र। बात समझ में आ गई? लेकिन अमूमन जब उम्दा का लफ्ज बोला जाए तो इसम के लिए बोला जाता है। किसके लिए? इसम। लिहाजा फेल को निकाल दो तो जब उम्दा का लफ्ज बोला जाए तो तीन चीजें मुराद लेते हैं अमूमन। कौन सी? मुब्तदा, खबर और फाइल या नाई फाइल। तवज्जो है? फिर सुनो, जुमला दो किस्म पर है, एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में क्या क्या है? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा है मुस्नद इलैह और खबर है मुस्नद, दोनों उम्दा हैं क्योंकि इनसे मिलकर कलाम पूरा हो जाता है। जुमला फेलिया में फेल है और आगे फाइल या नाई फाइल आएगा। फेले मारूफ हो तो फाइल आएगा, फेले मजहूल हो तो नाई फाइल। तो ये जो फेल है ये है मुस्नद, और ये जो फाइल या नाई फाइल है ये मुस्नद इलैह। तो ये दोनों क्या है? उम्दा। लेकिन उम्दा बोलकर अमूमन इसम मुराद लेते हैं। क्या मुराद लेते हैं? इसम। तो इसमें से एक तो फेल है जुमला फेलिया में, मुस्नद तो फेल है, लिहाजा उसको निकाल दो। अब जब मैं उम्दा का लफ्ज कहूं तो कितनी चीजें रह गई? तीन चीजें। देखो भाई, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के अंदर उम्दा क्या क्या? मुब्तदा और खबर। जुमला फेलिया में क्या है? फेल और फाइल या नाई फाइल। फेल को जरा निकाल दो, अब कुल कितनी चीजें रह गई? हां, कुल कितनी चीजें रह गई? तीन चीजें, मुब्तदा, खबर और फाइल या नाई फाइल। फाइल या नाई फाइल ये एक ही है, एक शुमार कर लो, सिर्फ फाइल कह दो, नाई फाइल उसी के साथ है भाई। बात समझ में आ गई? तो उम्दा जब बोला जाए तो ये तीन चीजें मुराद होती हैं। क्या क्या? मुब्तदा, खबर और फाइल या नाई फाइल, ये चीजें जो हैं इनको उम्दा कहते हैं। ये माना है कि हैसु यकानी उम्दतन फिल कलामी, इस तौर पर कि ये इसम और फेल कलाम में उम्दा होकर वाके होते हैं। वह हुआ ला यका उम्दतन फी ही, और हर्फ जो है कलाम में उम्दा होकर वाके नहीं होता। कमासा तारीफू, जैसे कि अन करीब आप जान लेंगे। वल किस्मुल अव्वलु, जी अब आगे मजीद वो वजह हसर चल रही है। इधर देखिए, वजह हसर क्या जिक्र हुई थी कि कलिमा या तो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उसकी जात में होगा या दलालत नहीं करेगा। दो किस्में बन गई, पहली किस्म जो दलालत करे और दूसरी किस्म जो दलालत ना करे। दूसरी किस्म का क्या नाम है? हर्फ। पहली किस्म कि जो अपने माना पर खुद दलालत करे, उसमें फिर कि उस दलालत के साथ फिर कोई तीन जमानों में से एक जमाना मिला होगा या मिला नहीं होगा। अगर मिला हो तो वो फेल है और अगर न मिला हो तो वो इसम है। अब ये बयान करेंगे तो कहते हैं वल किस्मुल अव्वल, और पहली किस्म। भाई पहली किस्म कौन सी है? खुद बतला रहे हैं शारह जामी। वह हुआ मायदुल्लु अला मानन फी नफसिहा, यानी वो कलिमा जो अपने माना पर खुद दलालत करे। इम्मा मिन सिफतिहा, या तो उसकी सिफत यह होगी अयक तरी नदालिकल मानल मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा फिल फहमी अनहा बि अहदिल अज़मिनति सलासा इम्मा मिन सिफतिहा अयक तरीना। यहां फिर मिन सिफतिहा निकाला उसी वजह से, क्या वजह थी कि यहां पर मुब्तदा क्या है अल किस्मुल अव्वलु और आगे इम्मा अयक तरीना, ये अन्य जुमले को किस माना में कर दिया मस्दर के माना में, यह खबर है तो अल किस्मुल अव्वल हुआ मुब्तदा और अयक तरीना हुई खबर और खबर मस्दर है और मस्दर का हमल तो जात पर सही नहीं, तो बतला दिया कि यहां पर भी मिन सिफतिहा यानी खबर मुकद्दम महजूफ है और अयक तरीना यह इक्तरान के माना में होकर यह मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा और खबर मिलकर यह जुमला इस्मिया होकर यह खबर है किसकी, अलकिस्मुल अव्वल की। देखिए भाई किताब पर, इम्मा मिन सिफतिहा अन यक्तरीना जालिकल मानल मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा फिल फहमी अनहा, तो कहते हैं इम्मा मिन सिफतिहा, तो या तो उस कलिमा की सिफत यह होगी अन यक्तरीना के मिला हुआ हो जालिकल माना वो माना, अयक्तरीना के बाद जालिकल माना का लफ्ज निकालकर जमीर का मर्जा बतला दिया कि यक्तरीना के अंदर हुआ जमीर, इसको यह न समझना कि लफ्ज की तरफ राजे है। अलकिस्मुल अव्वल तो लफ्ज है ना, कलिमा है, क्या है कलिमा है, तो यह न समझना कि यह किस्म अव्वल को जमीर राजे है यानी लफ्ज को राजे है, क्योंकि लफ्ज जमाने के साथ नहीं मिला होता बल्कि माना जमाने के साथ मिला होता है। इधर देखिए, एक है कलीमा, एक है उससे जो माना समझ में आ रहा है, तो ये जो माना है ये तीन जमानों में से किसी जमाने से मिला होता है, जो लफ्ज है वो जमाने से नहीं मिला होता। मुझे बताइए ज़ाराबा ये एक फेल है, ये लफ्ज जमाने से मिला हुआ है या इसका जो माना है पिटाई करना, वो पिटाई करना जमाने के साथ मिली हुई है, वो पिटाई करना जमाने के साथ मिली हुई है, मालूम हो वो पिटाई किस जमाने में हुई है, माजी के जमाने में हुई है, तो लफ्ज जमाने से नहीं जुड़ता बल्कि क्या जुड़ता है, माना जमाने के साथ मिला होता है। मैंने कहा ज़राबा जी, क्या माना, ये ज़राबा का लफ्ज जमाने के साथ मिला हुआ है या इसका इसका जो माना है पिटाई करना वो जमाने के साथ मिला हुआ है, पिटाई करना जमाने के साथ है कि यानी वो पिटाई किस में हुई है, जमाना माजी में हुई है, तो लफ्ज जमाने से नहीं जुड़ा होता बल्कि माना जमाने के साथ जुड़ा होता है, तो इसीलिए अयक्तरीना के बाद जालिकल माना निकालकर जमीर का मर्जा बतला दिया, या तो उस कलीमा की सिफत यह होगी कि मिला हुआ होगा वो माना, भाई कौन सा माना, अल मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा, जो मदलूल अलैह है बिनफ्सिल कलिमती, जो नफ्से कलिमा से समझ में आ रहा है यानी नफ्से कलिमा उस पर दलालत कर रहा है, नफ्से कलिमा का जो मदलूल है, अय्यक्तरीना ज़ालिकल मानल मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा फिल फहमी अनहा, अय्यक्तरीना के मिला हुआ हो ज़ालिकल माना वो माना जो है, कौन सा माना, अल मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा, जो मदलूल अलैह है नफ्से कलिमा से, नफ्से कलिमा जिस पर दलालत कर रहा है वो माना मिला हुआ हो, किसके साथ मिला हो, बी अहदिल अज़मिनति सलासा, तीन जमानों में से किसी एक जमाने से, दरमियान में फिल फहम अनहा की कैद बढ़ा दी साहिबे जामी ने, ये फिल फहमी अनहा की कैद के जरिए दरअसल मस्दर को निकालना मकसूद है, क्योंकि मस्दर भी फेल की तारीफ में दाखिल हो रहा था, मस्दर भी वजह हसर जिक्र कर रहे हैं कि कलिमा या तो अपने माना पर खुद दलालत करेगा या दलालत नहीं करेगा, अगर खुद अपने माना पर दलालत करे फिर वो माना तीन जमानों में से किसी एक जमाने से मिला होगा या नहीं मिला होगा, अगर वो माना तीन जमानों में से किसी एक जमाने से मिला है तो उसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं, तवज्जो है, वो माना अगर तीन जमानों में से किसी एक जमाने में से मिला हुआ है तो उसको फेल कहते हैं, इसमें मस्दर भी फेल की अंदर दाखिल हो गया, मस्दर भी, क्योंकि मस्दर मसलन जरबुन है, जरबुन का क्या माना, पिटाई करना मारना, ये जर्ब जो है पिटाई करना हमेशा किसी न किसी जमाने में होगी। शुर्ब का क्या माना? पीना, पीना, ये हमेशा किसी न किसी जमाने में होगा। कौल का क्या माना? कहना, बात करना, ये हमेशा किसी न किसी जमाने में होगा। क्या आप मुझे कोई ऐसी जर्ब दिखा सकते हैं जो तीनों जमानों में से किसी के अंदर ना हो? जर्ब जब भी होगी, मसदर जब भी होगा, तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो इन्होंने फेल की क्या तारीफ की कि वो माना मिला हुआ हो किसके साथ? तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, और मसदर भी तीन जमानों में से किसी। मसदर वो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और वो हमेशा तीन जमानों में से किसी एक जमाने के अंदर होता है। तो ये भी फेल की तारीफ में दाखिल हो रहा था। तो साहिब जामी ने फिल फहम अनहा की कैद के जरिए मसदर को निकाल दिया, मसदर को निकाल दिया, क्योंकि फिल फहम अनहा का क्या माना कि उस कलिमा से मफहूम होने में, यानी इधर देखिए, उस कलिमा से जो माना मफहूम हो रहा है उसके साथ जमाना मिला हुआ हो, यानी वो माना मफहूम होने के अंदर ही एक कलिमा है, वो खुद बखुद अपने माना पर क्या कर रहा है? दलाल। और इस कलिमे का जो माना हमें मफहूम होता है उसी के साथ जमाना भी जुड़ा होता है। तवज्जो है? कलीमे जैसे फेल है, जराबा जर्ब से है, जर्ब का क्या माना? पिटाई करना। तो जराबा का माना क्या? पिटाई करना। तो जराबा से हमें सिर्फ यह पिटाई करना समझ में आता है या पिटाई करना जो मफहूम हो रहा है उसके साथ जमाना भी मिला हुआ है? पिटाई करना जो मफहूम हो रहा है किससे? जराबा से क्या मफहूम हो रहा है? पिटाई करना। और यह किसी जमाने में है या बगैर जमाने के है? जमाने के साथ। तो जराबा का जो मदलूल है, जो माना, वो माना जो हमें जराबा से मफहूम हो रहा है वो जमाने के साथ भी मिला हुआ है। वो तो जो फिल फहमी अनहा की कैद के जरिए मस्तर को निकाल दिया, इसलिए क्योंकि मस्तर का तहकुक और वजूद जमाने में होता है। मस्तर का तहकुक और वजूद जमाने में होता है। मस्तर से जो माना मफहूम होता है उसके साथ जमाना नहीं मिला होता। मस्तर से जर्ब उनका क्या माना? पिटाई करना। तो मस्तर का माना आपको समझ में आया? जर्ब, फिर सुनो, जर्बुन मस्तर का मैंने कहा जर्बुन, माना समझ में आया? क्या माना? पिटाई करना। तो जर्बुन से जो माना आपको मफहूम हुआ, क्या इसके साथ कोई जमाना मिला हुआ है? तो जर्बुन से जो मस्तर का जो माना मफहूम होता है उसके साथ कोई जमाना मिला हुआ नहीं होता। हां, मस्तर का वजूद किसी ना किसी जमाने में होगा। तो वजूद और चीज है और कलिमा से जमाने का मफहूम होना और चीज है। मस्तर का तहकुक हमेशा किसी ना किसी जमाने में होगा। मसलन आपने जर्ब लगाई है तो यह जर्ब या माजी में होगी या हाल में होगी अगर आप अभी जर्ब लगा रहे हैं, या मुस्तकबिल में होगी अगर आप अभी तक जर्ब नहीं लगाई। तो जर्ब का वजूद तो किसी जमाने में होगा, लेकिन जर्ब से जो माना मफहूम हो रहा है, जर्ब से क्या माना मफहूम हो रहा है? पिटाई करना, उसके साथ कोई जमाना मिला हुआ नहीं है। जबकि फेल के अंदर जराबा से जो माना मफहूम हो रहा है, जराबा इसमें पिटाई करने का माना है, लेकिन ये जो माना जराबा से मफहूम हो रहा है इसी के साथ क्या मिला हुआ है? तीन जमानों में से कोई जमाना भी। तो फिल फहम अनहा के जरिए किसको निकाल दिया? मस्दर को। किस तरह निकाला? कि मस्दर के माना, मस्दर से जो माना मफहूम होता है उसके साथ कोई जमाना नहीं होता। वजूद के एतबार से मस्दर के लिए जमाना है लेकिन उसके मफहूम के साथ के अंदर जमाना नहीं है। जबकि फेल से के मफहूम के साथ जमाना भी समझ में आता है। बात समझ में आ गई? आप देखिए कि अय्या कतरीना के मिला हुआ होगा जालिकल मानल मदलूल अलैहि बिनफसिहा, वो माना जो मदलूल है नफ्से कलिमा का, मिला हुआ हो वो माना। तवज्जो है? फेल के माना के साथ जमाना मिला हुआ होता है। अब जरा जराबा पे नजर रखना, और जराबा का मदलूल अलै क्या है? कौन सा माना है? पिटाई करना। और इस पिटाई करने के साथ क्या मिला होगा? जमाना। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं कि अय्यक्तरीना जालिकल माना के मिला हुआ होगा वो माना जो मदलूल अलै है नफ्से कलिमा का, वो माना मिला हुआ होगा بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَة کس کے ساتھ؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ معنی ملا ہوا ہوگا. فِي الْفَحْمِ عَنْهَا اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں وہ تین زمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. تو ضربہ سے پٹائی کرنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا یہ پٹائی کرنا کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ زمانے. تو ضربہ کا جو معنی ہے تو ضربہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خود بخود اس سے سمجھ میں آتے ہیں, اور یہ معنی جو اس کلمے کا یعنی ضربہ کا مدلول ہے یہ معنی کلمہ سے مفہوم ہونے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے, بغیر زمانے کے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب صرف نفس ترجمہ دیکھ لو. بس کہتے ہیں والقسم الاول, اور پہلی قسم, وہو ما يدل على معنى في نفسها, وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے, اما من صفتها, یا تو اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی کہ ان يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها, کہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہے اس نفس کلمہ کا, وہ ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ ملا ہوگا؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. فی الفہم عنہا, اس کلمہ سے وہ معنی مفہوم ہونے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. اب ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اب وہ تین زمانے کون سے ہیں؟ اعنی الماضی والحال والاستقبال, یعنی ماضی حال اور استقبال. اي حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم احد الازمنه الثلاثه ايضا مقارنا له, يعني جب وہ معنی سمجھ میں آتا ہے اس کلمے سے. انہا کی ضمیر کس کو راجے؟ کلمہ کو. یعنی اي حين يفهم ذلك المعنى عنها, یعنی جب وہ معنی سمجھ میں آتا ہے اس کلمے سے, تو يفهم احد الازمنه الثلاثه ايضا, تو تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے, مقارنن لہو, اسی کے ساتھ ملا ہوا. فعل کا جو معنی سمجھ میں آتا ہے اسی معنی کے ساتھ ملا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے. او من صفتہا ان لا یخترن, او من صفتہا, بھائی پھر یہ وہی عبارت ادھر دیکھیے, کیا کہا تھا متن میں؟ کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا, یا دلالت نہیں کرے گا. اگر نہ کرے تو وہ حرف ہے, اگر دلالت کرے تو وہ پھر دو قسم پر, یا تو اس معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. ملا ہو یہ پہلی قسم, نہ ملا ہو یہ دوسری قسم. تو پہلی قسم بتلائیں گے یہ کیا ہے؟ فعل. اور دوسری قسم کیا ہے؟ اسم. او من صفتها الا يقترن ذلك المعنى في الفهم عنها مع احد الازمنه الثلاثه, یا اس قسم کی صفت یا اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی کہ وہ ملا ہوا نہ ہو وہ معنی اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. جی, تو القسم الثانی, تو دوسری قسم جو ہے, کون سی دوسری قسم؟ نہ ملا ہو معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ملا ہو, اس کو اسم کہیں گے. اور جو پہلی قسم ہے یعنی جو ملا ہوا ہو اس کو فعل کہیں گے. تو کہتے ہیں اسانی, دوسری قسم جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ صاحب جامی بتلا رہے ہیں, وہ ہوا ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه, جو وہ کلمہ جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو, غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ, اور ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. غیر معنی کی صفت ثانی بن جائے گی, معنن مجرور فی نفسہا صفت اول, اور غیر مقترن صفت ثانی. دوسری قسم جو ہے وہ ہوا ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه الاسم, دوسری قسم کی جو دلالت نہ کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو اور ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ, الاسم وہ اسم ہے. وَهُوَ مَاخُوزٌ مِنَ السِّمْوِ. یہاں سے اسم کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں. یاد رکھیے اسم کی وجہ تسمیہ کے اندر علماء کا اختلاف ہے. ایک مذہب ہے کوفہ والوں کا اور ایک مذہب ہے بصرہ والوں کا. یہ بصرہ اور کوفہ یہ بڑے کبار علماء کے مرکز تھے دونوں بھائی, اور بڑے بڑے علماء فقہا نحوی حضرات ان میں رہتے تھے. تو یہ جو کچھ بصرہ والے نحوی ہیں اور کچھ کوفہ والے, یہ کچھ مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے. ان کا آپس میں اختلاف ہے کچھ مسائل کے اندر. علماء فرماتے ہیں کوئی لگ بھگ 110 نحوی مسئلے ہیں جن میں کوفہ اور بصرہ والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ اسم کی اصل کے بارے میں ہے کہ یہ اسم اصل میں کیا تھا, اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں. تو بصرہ والے کہتے ہیں کہ اسم کا لفظ یہ ماخوذ ہے سمون سے. سمون 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 یہ مثلث الفا ہے. مثلث الفا اس کلمے کو کہتے ہیں جس کی فا پر تینوں حرکتیں جائز ہوں. تو سمون سمون اور سمون. تو بصرہ والے علماء فرماتے ہیں کہ اسم یہ سمون سے بنا ہے. سمون کے آخر سے واو کو حذف کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ کو لے آئے, کیا بن گیا؟ اسمون بن گیا. تو یہ سمون سے بنا ہے, اور سمون کا معنی ہے بلند ہونا, اونچا ہونا. اسم بھی چونکہ اپنی دونوں قسیمین پر اونچا ہے, یہ فعل اور حرف پر اونچا ہے, بلند ہے. بھئی کس طرح بلند ہے؟ کہتے ہیں جو اسم ہے یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی. فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ. تو اسم دونوں بنتا ہے. تو کلام کے لیے دو جز چاہیے, ایک مسند اور ایک مسند الیہ. تو آپ دو اسم لے آئیں, ایک کو مسند الیہ بنا دیں, ایک کو مسند بنا دیں, تو دیکھو صرف اسم سے مل کر ہی کلام پورا ہو جائے گا. جبکہ فعل صرف مسند بنتا ہے, مسند الیہ نہیں بن سکتا. لہذا صرف اکیلے فعل کے ذریعے کبھی بھی کلام پورا نہیں ہو سکتا. اور حرف وہ تو نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ. تو اسم کا مقام باقی دونوں سے اعلی ہوا کہ یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی, اور اکیلے اسی سے کلام بھی پورا ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا یہ اسم سمون سے بنا ہے, کیونکہ سمون کا معنی بھی کیا ہے؟ بلند ہونا. اور یہ اسم بھی فعل اور حرف کے مقابلے میں بلند ہے کہ اکیلے اسم سے ہی پورا کلام بن جاتا ہے. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وہ ہوا ماخوذ من السموی, اور یہ اسم کا لفظ ماخوذ ہے سمون سے. وہ ہوا العلو, اور وہ علو یعنی بلند ہونے کو کہتے ہیں, بلندی کو کہتے ہیں. لاستعلائہ علی اخویہ, بوجہ اس کے بلند ہونے کے. علی اخویہ اپنے دونوں بھائیوں پر, اس وجہ سے کہ یہ بلند ہے اپنے دو بھائیوں پر یعنی فعل اور حرف پر. بھئی کس طرح بلند ہے؟ کہتے ہیں حیث یترکب منہ وحدہ الکلام, کیونکہ مرکب ہوتا ہے اس اکیلے سے کلام. اس اکیلے سے کلام مرکب ہو جاتا ہے. دو اسم لے آئیں, ایک کو مسند بنا دیں, ایک کو مسند الیہ, تو اس اکیلے اسم سے ہی کلام بن گیا. کہتے ہیں حیث یترکب منہ وحدہ الکلام, کے اس طور پر کہ اس اسم اکیلے سے ہی کلام مرکب ہو جاتا ہے. دون اخوی ہی, نہ کہ اس کے دوسرے دو بھائیوں سے, اکیلے فعل یا اکیلے حرف سے کلام مکمل نہیں ہوتا. وقیل من الوسم, یہ کوفہ والوں کا قول آ گیا. کوفہ والے کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے وسمن سے بنا ہے. کس سے؟ وسمن. یاد رکھو یہ لفظ وسمن بھی صحیح اور وسمن بھی صحیح. یہ وسمن, یہ لغت آپ اٹھائیں تو آپ کو وسمن نہیں ملے گا, بلکہ کیا ملے گا؟ وسمن ملے گا. توجہ ہے؟ وسمن. لیکن وسمن نہیں ملے گا. لیکن نحو کی کتابوں میں آپ پڑھیں تو وہ لکھیں گے کہ یہ وسمن سے ماخوذ ہے. اسمن, پھر واو کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے. کیا بن گیا؟ اسمن ہو گیا. تو بھئی لغت میں تو ہمیں وسمن نہیں ملتا, بھئی لغت میں آپ کو سیمتن ملے گا. سیمتن جیسے عیدتن اصل میں کیا تھا؟ वेअदुन था, फिर वाव को हजफ किया और उसके इवज आखिर में क्या ले आए, गोल था, तो क्या बन गया, ईदतुन। इसी तरह विस्मुन था, फिर शुरू से वाव को हजफ किया, आखिर में गोल ता ले आए, क्या बन गया, सिमतुन। तो सिमतुन आपको लुगत में मिलेगा भाई। तो कूफा वाले कहते हैं वकीला मिनल विस्मी के ये इसम माखूज है विस्मुन से, वह हुवल अलामतु, और विस्मुन अलामत को कहते हैं, लि अन्नहु अलामतुन अला मुसम्माहु, क्योंकि इसम भी अपने मुसम्मा पर अलामत है, क्योंकि इसम भी अपने मुसम्मा पर अलामत है। मैंने कहा जैद, आपको फौरन किसकी सूरत आपके जहन में आ गई, जैद की। मैंने कहा किताब, फौरन किसकी सूरत आ गई, किताब की। मैंने कहा कलम, फौरन किसकी सूरत जहन में आ गई, कलम की। तो इसम क्या होता है, अपने मुसम्मा पर अलामत होता है। इसम कहें तो मुसम्मा क्या है, उस पर दलालत हो जाती है, इसलिए इसम को इसम कहते हैं। इसम किससे अखज किया गया है, वेस्मोन से, ये कूफा वालों का कौल है। और वेस्मोन का क्या माना, अलामत। इसम भी अपने माना पर, अपने मुसम्मा पर अलामत होता है, उस पर दलालत करता है, इसलिए इसको इस्मुन कहते हैं, ये विस्मुन से माखूज है। बात समझ में आ गए। तो कहते हैं वकीला मीनल विस्मी, ये माखूज है विस्मुन से, और वो अलामत को कहते हैं, लि अन्नहु अलामतुन अला मुसम्माहु, क्योंकि इसम भी अपने मुसम्मा पर अलामत होता है। मुसम्मा यानी जिसका इसम है, जिसका इसम रखा गया है। देखिए दो कौल जिक्र किए, एक कूफा वालों का और एक बसरा वालों का। और साहिबे जामी ने बसरा वालों के कौल को तरजीह दी और कूफा वालों के कौल को इसीलिए उन्होंने कीला के साथ जिक्र किया कि वकीला मीनल विस्मी। और मैंने बताया था कीला सीगा तमरीज है, इसके जरिए कमजोर कौल को जिक्र किया जाता है। तो यह बहरहाल उलमा की अपनी अपनी राय है, ज्यादातर नहवी बसरा वालों के मजहब को तरजीह देते हैं। आगे देखिए वल किस्मुल अव्वलो, और पहली किस्म जो है, पहली किस्म कौन सी थी कि कलीमा अपने माना पर खुद दलालत करता है और तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिला हुआ होता है, वो उसको फेल कहते हैं। अब वो जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वल किस्मुल अव्वल, और पहली किस्म जो है वह हुआ मा यदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, वो कलीमा है, मां से क्या मुराद, कलीमा, वो कलीमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर, फी नफ्सिहा, जो उस कलीमा की जात में होता है, मुक्तरिनिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा, और वो माना मिला हुआ होता है तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ, अल-फ़िअल वो फेल है। तो ये पहली किस्म जो अपने माना पर खुद दलालत करती है और तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिली हुई होती है, अल-फ़िअलु, इसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। अब आगे सुम्मिया बिही, यहां से फेल की वजह तस्मिया जिक्र कर रहे हैं कि फेल को फेल क्यों कहते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि फेल का माना मुरक्कब है तीन चीजों से, एक उसके अंदर मस्तर होता है, माने मस्तरी होता है, दूसरा जमाना, और तीसरा निस्बत इलल फाइल। जाराबा, जाराबा से आपको तीन चीजें समझ में आ गई, क्या जर्ब समझ में आई कि जर्ब वाला फेल हुआ है, दूसरी बात जमाना कि किस जमाने में यह जर्ब हुई है, जमाने माजी में, और तीसरा निस्बत इलल फाइल कि कोई है इस जर्ब को लगाने वाला, यह खुद बखुद नहीं हुई। बात समझ में आ गई। तो फेल का माना मुरक्कब होता है कितनी चीजों से, माने मस्तरी से और जमाने से और निस्बत इलल फाइल से। तो मालूम हुआ फेल मुतजम्मिन होता है मस्तर को, फेल के अंदर कौन होता है, मस्तर होता है, तवज्जो है, मस्तर होता है। और मस्तर जो है इसको अरबी जुबान में फेल कहते हैं, मस्तर को अरबी जुबान में फेल कहते हैं। फेल की वजह तस्मिया के फेल को फेल क्यों कहते हैं, कहते हैं फेल को फेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फेल मौजूद है, जब इसके अंदर फेल मौजूद है तो इस सारे को ही फेल कह दिया। तो फेल का माना मुरक्कब होता है तीन चीजों से, मस्दर, जमाना और निस्बत इलल फाइल। तो हर फेल के अंदर गोया मस्दर मौजूद है, और इस मस्दर को अरबी जुबान में क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्दर को अरबी जुबान में क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। लिहाजा इस सारे मजमूए को क्या कह दिया, फेल। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो। एक तो ये इस्तिलाह में फेल है, नहवियों के नजदीक फेल, तवज्जो है, अरबी जुबान में फेल इसको नहीं कहते, अरबी जुबान में फेल मस्तर को कहते हैं, जरबुन ये क्या है, अरबी जुबान वाले से पूछें तो वो कहेगा ये फेल है, शोर्ब ये क्या है, फेल है, कौलुन ये क्या है, फेल है, तो वो मस्तर को फेल कहते हैं। उर्दू में भी इसी तरह है, मसलन मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सारा दिन क्या मसरूफियात होती हैं, आप क्या काम करते हैं, क्या अफाल सर अंजाम देते हैं, आप कहते हैं मुझे दिन में बहुत से काम करने पड़ते हैं, बहुत से अफाल सर अंजाम देने पड़ते हैं, मसलन पढ़ना लिखना तकरार करना सबक याद करना मुताला करना खाना पीना सोना और खेलना बाजार जाना, देखा ये कितने ही आपने कितनी ही चीजें गिनवा दी, लेकिन क्या आपने गौर किया, मैंने कहा था आपको क्या अफ़ाल करने पड़ते हैं और आप मुझे जवाब में मस्दर गिनवा रहे हैं, खाना पीना सोना जागना ये सारे क्या हैं, मस्दर हैं। मालूम हुआ उर्दू जुबान में भी फेल किसको कहते हैं, मस्दर को कहते हैं, इसी तरह अरबी जुबान में भी मस्दर को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। और ये जो इस्तिलाही फेल है इसको भी फिर फेल कहने लग पड़े, क्यों फेल कहने लग पड़े, क्योंकि इसके माना के अंदर मस्दर आ रहा था, क्योंकि इस्तिलाही फेल के माना में कितनी चीजें हैं, तीन चीजें, मस्दर जमाना और निस्बत इलल फाइल, तो इसके अंदर चूंकि मस्दर था इसलिए सारे का नाम ही क्या रख दिया, फेल रख दिया। सुमिया भी फेल को फेल के नाम के साथ मौसूम किया गया, यानी फेल का नाम फेल रखा गया, लितजम मुनिहिल फेल लुगविया, इस वजह से कि यह मुतजमीन है फेले लुगवी को, यानी जिसको अरबी जुबान में फेल कहते हैं ये उसको मुतजमीन है भाई। वो फेले लुगवी क्या है, कहते हैं वह हुल मस्दर, वो मस्दर है, मस्दर जो है फेले लुगवी है, यानी अरबी जुबान में इसको फेल कहते हैं। तो चूंकि ये जो इस्तिलाही फेल है, इस्तिलाही फेल किसे कहते हैं, ऐसा कलिमा जो अपने माना पर खुद बखुद दलालत करे और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला हुआ हो, इसको भी फेल कहने लग पड़े, क्यों, क्योंकि इसके जिमन में इसके बीच में क्या आ गया था, मस्दर आया था, और मस्दर को अरबी जुबान में क्या कहते हैं, फेल, तो इस सारे मजमुए का नाम ही क्या रख दिया, फेल रख दिया। तो यह तस्मियतुल मुतजमिन भी इस्मिल मुतजमन, फेल इस्तिलाही के बीच में क्या आ गया, मस्दर, तो ये जो फेल इस्तिलाही है यह मुतजमिन, इसके जिमन में है, कौन है इसके जिमन में, मस्दर, वो हुआ मुतजमन, वो मुतजमन, तो मुतजमिन यानी फेल इस्तिलाही को फेल कह दिया, किसकी वजह से, मस्दर यानी मुतजमन की वजह से, तो इसको कहते हैं तस्मियतुल मुतजमिन बिस्मिल मुतजमन, मुतजमन का नाम दे देना किसको, मुतजमिन को। बात समझ में आ गई, फेल इस्तिलाही क्या है, फेल इस्तिलाही, फेल इस्तिलाही इस्तिलाह में इल्मे नह में फेल किसे कहते हैं, वो कलिमा जो अपने माना पर खुद बखुद दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ मिला हुआ हो। ये जो मफहूम है इस सारे का नाम फेल रखा, भाई फेल क्यों रखा है इस सारे का नाम, कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर मस्तर था और मस्तर को अरबी जुबान में क्या कहते हैं, फेल, तो इस सारे मजमुए का नाम भी क्या रख दिया, फेल रख दिया। तो इसको क्या कहेंगे, तस्मियतुल मुतजमिन बिस्मिल मुतजमन, इसके अंदर जो मुतजमन है मस्दर उसको चूंकि फेल कहते थे, तो इस मुतजमिन जो है ये सारा मजमुआ जिसने मस्दर को अपने जिमन में लिया हुआ है इसको भी क्या कहने लग पड़े, फेल कहने लग पड़े, इसका नाम भी फेल रख दिया। बात समझ में आ गई, ये यूं कह लो, इसको कहते हैं तस्मियतुल कुल बि इस्मिल जुज, तस्मियतुल कुल बि इस्मिल जुज। देखो फेल का मफहूम मुरक्कब था कितनी चीजों से, तीन चीजें, कौन कौन सी, मस्दर जमाना और निस्बत इलल फाइल, तो इसमें से एक जो है मस्दर उसको फेल कहते थे, तो उस एक जुज की वजह से कुल का नाम ही क्या रख दिया, फेल रख दिया। तो ये क्या है, तस्मियतुल कुल भी इस्मिल जुज, एक जुज की वजह से कुल का वही नाम रख देना। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह, चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।